प्रभाग की वर्ष 2024-25 की सेवाओं की संक्षिप्त झलकियां। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का समाज सेवा प्रभाग पिछले 39 वर्षों से समाज के हर वर्ग के उत्थान, सशक्तिकरण और विकास के लिए समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहा है। समाज सेवा प्रभाग की ओर से वर्ष 2024-25 में भारत एवं नेपाल में 3,840 के अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2024 की सेवा थीम स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर अनेकों अभियान, पौधारोपण कार्यक्रम, समाज सेवी कार्य, सम्मेलन, वर्कशॉप, मेला, काउंसलिंग प्रोग्राम, राजयोग शिविर के माध्यम से लाखों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया तथा उत्तराखंड, सिक्किम, असम, केरल और नेपाल में प्रदेश स्तरीय अभियान संचालित किए गए। गैंगटॉक सिक्किम में आयोजित स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर सार्वजनिक सभा को बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने संबोधित किया। तमाम मंत्रिमंडल सदस्य अरुण उप्रेती, शहरी विकास मंत्री सोनम लामा, धर्म व संस्कृति मंत्री विधायक दिले नामगेल परफुमगपा, क्षेत्रीय विधायक तेंजिंग नुरबू लामथा, श्रीमती कृष्णा कुमारी राय पूर्व विधायक, श्रीमती छेरिंग पालदेन उपमहापौर आदि बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति में प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार, संयुक्त राष्ट्रीय संयोजिका बीके वंदना बहन, मुख्यालय संयोजक बीके बीरेंद्र, ईवी स्वामीनाथन, ईवी गिरीश, आशा बहन खानपुर दिल्ली, विजय लक्ष्मी बहन डूंगरपुर आदि ने विचार व्यक्त किए। गैंगटॉक सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनम बहन के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 50 से अधिक समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 1500 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। इस अभियान में 10 विद्यालयों एवं 3 महाविद्यालयों के 600 से अधिक विद्यार्थी एवं दर्जनों शिक्षक उपस्थित रहे। प्रभाग की 3 दिवसीय बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से आए 80 सहभागियों ने भाग लिया। गांधीधाम में सर्व समाज सेवियों का स्नेह मिलन आयोजित किया गया, जिसमें कच्छ गुर्जर एवं क्षत्रिय समाज के 2 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। लालवानी गांधीधाम कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष महंत श्री त्रिक्रम दास महाराज, प्रमुख श्री रसात्मक स्वरूप राधेकृष्ण मंदिर, श्रीमती निशा सुशील कुमार सिंह, ईवी गिरीश, विजय लक्ष्मी बहन, रीना बहन, अंकिता बहन, पद्मा बहन, भारती बहन समेत विभिन्न वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 1100 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। पंजाब जोन के उत्तराखंड में 10 दिवसीय वाह जिंदगी वाह विषयक अभियान आयोजित हुआ, जो श्रीनगर से आरंभ होकर गौचर, पौड़ी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रूड़की, हरियाणा के असंध, कादमा, झोंझुकला होते हुए सिरसा पहुंचकर संपन्न हुआ। अभियान में स्पोर्ट्स विंग सीनियर नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मेहरचंद, ईवी गिरीश, बीके नीलम बहन, बीके बीरेंद्र, बीके प्रकाश माउंट आबू, असंध प्रभारी बीके उषा बहन, देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी, असंध विधायक देवेंद्र राणा की उपस्थिति में हजारों लोग लाभान्वित हुए। केरल राज्य में 15 दिवसीय अभियान कोच्चि से आरंभ हुआ। एर्नाकुलम, अलपुजा, मुन्नार, पलक्कड़, कालीकट, वायनाड, तेलिचेरी, तलिपरांबा, माइल आदि होते हुए मैसूर में संपन्न हुआ। अभियान में हजारों लोग लाभान्वित हुए। इस दौरान सराहनीय कार्यों के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यशालाएं, पौधारोपण, योग शिविर, प्रेस वार्ताएं व प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को आवश्यकता अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई गई। असम राज्य के कारागारों में सजायाफ्ता कैदियों को ईश्वरीय संदेश देने व सहज राजयोग का अभ्यास कराकर उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण लाने को उदय रूपांतरण की ओर अभियान संचालित किया गया, जिसमें असम के 27 जिलों में मानसिक सशक्तिकरण से परिवर्तन, बेहतर भविष्य के लिए राजयोग मेडिटेशन विषय पर कैदियों के जीवन परिवर्तन के लिए परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीके जुनाली बहन, बीके गंगा बहन, बीके राखी बहन समेत गुवाहाटी सब जोन की टीम के सहयोग से 20 दिसंबर 2024 से आरंभ होकर यह कार्यक्रम 23 मार्च 2025 तक चला। नडियाद में विशिष्ट समाज सेवी प्रतिभाओं का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके अवतार भाई माउंट आबू, बीके पूर्णिमा दीदी गुजरात जोनल कोऑर्डिनेटर, ईवी गिरीश भाई मुंबई, धवल भाई नडियाद, विपिन भाई पटेल अध्यक्ष निशक्त जनसेवा आश्रम, विपिन भाई शाह अध्यक्ष चेम्बर ऑफ कॉमर्स, मन्नू भाई जोशी अध्यक्ष जय मानव सेवा परिवार ने विचार व्यक्त किए। 50 से अधिक समाज सेवियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। 800 से अधिक लोगों की सहभागिता रही। हिसार में स्वर्णिम भारत अनुभूति मेला आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवा प्रभाग की ओर से जीवन दर्शन समाज सेवा प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी अवलोकनार्थ हिसार विधायक जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज की अध्यक्षा सावित्री देवी सहित हजारों लोग आए। बीके रमेश दीदी, सुनील भाई चरखी दादरी, महावीर भाई माउंट आबू, सोमवीर भाई ओआरसी व हिसार के भाई बहनों का विशेष सहयोग रहा। इसी तरह मुंबई में प्रभाग अध्यक्ष राजयोगिनी संतोष दीदी के मार्गदर्शन में लालबाग कल्पतरु सोसाइटी में त्रिमूर्ति शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। 6 दिवसीय मेले में हजारों लोगों ने लाभ लिया, जिसमें तारा बहन, माला बहन, शीला बहन, वंदना बहन आदि का विशेष सहयोग रहा। ज्ञान सरोवर परिसर में समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी अध्यात्म विषय पर 5 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष दीदी, कच्छ गुजरात से लाइफ स्किल डायनेमिक मेडिटेशन के संस्थापक डॉक्टर पंडित देवज्योति शर्मा, पुणे से जीवन प्रकाश योजना के अध्यक्ष रमन लाल लुंकड़, दिल्ली से दृष्टि उत्थान ट्रस्ट के संस्थापक श्रीमती शालू दुग्गल, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय रचनात्मक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति कुमार मिश्रा, मुंबई से ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट पीयूष ठोका, चंडीगढ़ में लायन सुप्रीम की अध्यक्षा अर्चना महेंदीरत्ता, करनाल से रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व असिस्टेंट गवर्नर कृष्ण गंभीर, इंदौर से इंदौर जूनियर चैम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सरजीव पटेल, अमरावती से कारागार अधीक्षक कीर्ति चिंतामणि, समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके प्रेम भाई, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके अवतार भाई, अतिरिक्त राष्ट्रीय संयोजिका बीके वंदना दीदी, मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र सहित देश भर से आए जोनल रीजनल कोऑर्डिनेटर आदि वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। नेपाल में अलग अलग समय पर 3 अभियान हुए। नगरकोट काठमांडू से समाज सेवा प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय भर्ती और प्रशिक्षण का आयोजन राज दीदी, निदेशिका काठमांडू जोन नेपाल व किरण बहन के नेतृत्व में ईवी स्वामीनाथन, ईवी गिरीश, बीके बीरेंद्र समेत भारत के प्रभाग के पदाधिकारी व अन्य सदस्यों ने भाग लिया। दूसरे 11 दिवसीय अभियान के दौरान विराटनगर, धरान, इंद्रुआ समेत जनकपुर पहुंचकर संपन्न हुआ। इसी तरह 7 दिवसीय अभियान बीरगंज, हेटौड़ा, दुलाबारी आदि से होते हुए नारायणगढ़ में संपन्न हुआ। इन तीनों ही अभियानों के दौरान हजारों लोग लाभान्वित हुए। चीन व हांगकांग में भी समाज सेवा प्रभाग द्वारा सेवाएं हुई, जिसके तहत बीजिंग, गुंगजाओ और हांगकांग में हुए विभिन्न कार्यक्रमों में ईवी स्वामीनाथन, ईवी गिरीश, बाबू भाई कच्छपुज, बीके ब्रज भाई चीन, बीके सिस्टर चैन बीजिंग, बीके सपना बहन गुंगजाओ, बीके बिंदु बहन हांगकांग आदि की उपस्थिति रही। ओआरसी दिल्ली में 4 दिवसीय स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 700 से अधिक समाजसेवियों ने भाग लिया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग केंद्रीय मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमित कुमार घोष बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी, राजस्थान जोनल कोऑर्डिनेटर बीके शांता दीदी, दिल्ली जोनल कोऑर्डिनेटर आशा बहन, अजमेर सब जोनल कोऑर्डिनेटर अंकिता बहन, महाराष्ट्र जोनल कोऑर्डिनेटर सीता बहन आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रतिभागियों को तुलसी के पौधे, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर व सरोफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व पश्चिम विहार व नरेला दिल्ली में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित हुए। छतरपुर के अंतर्गत 12 कारागारों में 25 कार्यक्रम हुए। प्रगतिशील दिव्यांग संसार एवं निर्वाणा फाउंडेशन में दिव्यांग व मानसिक रूप से विबंधित बच्चों के लिए 6 कार्यक्रम, वृद्धाश्रम महिला बाल विकास की जवाली योजना के अंतर्गत सत्य शोधन आश्रम में 5 कार्यक्रम किए। इस तरह वृक्षारोपण, हेल्थ कैंप, नशा मुक्ति रैली, नुक्कड़ नाटक आदि 150 से अधिक कार्यक्रम हुए। आओ आध्यात्म अलख जगाएं, एक दिव्य समाज बनाएं विषय को लेकर कई स्थानों पर अलग अलग नवासी कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्कृष्ट कार्यों के लिए 268 मुख्य समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज की पुनर्स्थापना विषय के अंतर्गत वर्ष भर में अनेक कार्यक्रम किए गए, जिसमें लगभग 50,000 लोग लाभान्वित हुए। इसी तरह से जम्मू, कादमा, सारवाड़, अशोकनगर दिल्ली, नरेला दिल्ली, दमक नेपाल, बीरगंज नेपाल में स्वास्थ्य जांच कैंप एवं रक्तदान शिविर के कार्यक्रम रखे गए। डूंगरपुर, सागवाड़ा, कुशीनगर, देवरिया, इंदौर, गोरखपुर, रावतभाटा, उदयपुर, मिर्जापुर, नीमच, बाराबांकी, तिलकनगर दिल्ली, परमपुरी दिल्ली, पश्चिम विहार दिल्ली, जम्मू बिलावर, बीड, पंढरपुर, कुल्लू, जमशेदपुर, राजकोट, मेरठ, रुड़की, अमरावती, बेतिया, बिलासपुर छत्तीसगढ़, लखनऊ, चंडीगढ़, चिकमंगलूर, मंडी डबवाली, अयोध्या, शाहबाद, मारकंडा समेत सैकड़ों शहरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लाखों लोग लाभान्वित हुए। समाज सेवा प्रभाग आगे भी ईश्वरीय सेवाओं में सतत प्रयासरत रहेगा। ओम शांति।
हमें समझानी, इन्हीं को कहते दादा दादी, इन्हीं को नाना नानी। इनसे अच्छी लगती सुननी हमको रोज कहानी, सदा ही इनके चेहरे पर मुस्कान हमें है लानी, मुस्कान हमें है लानी।
हर दम हमारे जो साथ खड़े, हर दम हमारे जो साथ खड़े,
वो है हमारे बुजुर्ग बड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े,
वो है हमारे बुजुर्ग बड़े। खौफ नहीं घर लगता इन्हीं के होने से, हर डर से हमको बचाते ये, डर जाते हमारे रोने से, इनका बैठे रहना भी हम सब के लिए सुरक्षा है। क्या खूब बनाया इन्होंने ही जीवन का हमारे नक्शा है, जो हर गुण के मोती से हमको जड़े, जो हर गुण के मोती से हमको जड़े,
वो है हमारे बुजुर्ग बड़े,
वो है
हमारे बुजुर्ग बड़े,
वो है हमारे बुजुर्ग बड़े। हम इनके जीवन को भर दें, जो ये हमसे चाहते वो आशाएं पूरी कर दें, हाँ इनकी सेवा करके आओ पाले हम सब जन्नत, इनकी दुआएं करती पूरी जीवन की हर मन्नत। जो मुश्किलों से हमारे लिए है लड़े, मुश्किलों से हमारे लिए है लड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े।
जीवन के हर अनुभव की जो देते हमें समझानी, इन्हीं को कहते दादा दादी, इन्हीं को नाना नानी। इनसे अच्छी लगती सुननी हमको रोज कहानी, सदा ही इनके चेहरे पर मुस्कान हमें है लानी, सदा ही इनके चेहरे पर मुस्कान हमें है लानी,
मुस्कान हमें है लानी।
ओम शांति। अभी जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, ये रशिया में हुई सीनियर सिटीजन्स की सेवाएं जो पिछले 21 वर्षों से चल रही हैं उसकी रिपोर्ट है। और जो भी पीछे पीछे बैठ रहे हैं, सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी कृपया आगे की कुर्सियां ऑक्यूपाई करें, पहले भरें। पीछे जो भी पर्दे के पीछे बैठे हैं या पर्दे के बिल्कुल पास बैठे हैं, आप सभी आगे की कुर्सियों में आ सकते हैं।
हेलो हेलो और अब देवी सचिव माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में आज एक महत्वपूर्ण एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। यहां पर मंच पर मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था के बीच मंत्रालय की तरफ से निवेदन है हमारे माननीय सचिव श्री अमित यादव जी से, और ब्रह्म कुमारी संस्था से मैं निवेदन करती हूं ब्रह्म कुमारी आशा दीदी से कि आप इस एमओयू का आदान प्रदान करें। यह एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान ब्रह्म कुमारी संस्था देवी सृजनों वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में योगदान उनका अत्यंत रहा है, सराहनीय रहा है, और उनका अनुभव और समर्पण हमारे इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाएगा, जिसके बारे में अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने भी यहां पर उल्लेख किया। दिस एमओयू इज एम्ड एट प्रमोटिंग मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल वेलनेस अमंग सीनियर सिटीजन्स अक्रॉस द कंट्री।
समय बाकी है उनके अधूरे ख्वाबों में, तुम्हारी हर एक बात बाकी है। बचपन से अब तक जिन कंधों ने तुमको ऊंचाई दी है, अब समय है तुम सहारा दो, यही असली खुदाई है।
बस
बचपन चंचल उज्जवल।
हम सभी करतल ध्वनि से माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर श्री वीरेंद्र कुमार जी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के केंद्र मंत्री का बहुत बहुत सभा में अभिनंदन करते हैं। आज वो बहुत सुंदर घड़ी है जब आप ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय के इस शांतिवन प्रांगण में, डायमंड हॉल में, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हेतु पधारे हैं। कल से आप हमारे बीच में हैं। ब्रह्मा कुमारीज के सभी गतिविधियों को गौर से आप देख रहे हैं। यूं तो आपका परिचय ब्रह्मा कुमारी से पुराना है, लेकिन आज हम सभी आपको इस उद्देश्य से यहाँ पाकर बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। सभी तालियों के साथ इस हर्ष का प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ मंच पर, अब मंच की शोभा बढ़ाने के लिए क्योंकि हमारे माननीय मंत्री पहुँच चुके हैं, तो मैं स्वागत करती हूँ मंच पर आदरणीय सुषमा दीदी जी, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय करुणा भाई जी, आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी और हमारे बीच में और भी अतिथिगण पहुँचने वाले हैं। उन सबका भी मैं मंच पर आवाहन करती हूँ। हमारे बीच में लुम्बा राम जी भी पहुँच चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय संतोष दीदी जी का भी हम मंच पर आवाहन करते हैं। आदरणीय अवतार भाई जी, आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, आपको भी हम मंच की शोभा बढ़ाने के लिए मंच पर आपका आवाहन करते हैं। डॉक्टर रश्मिकांत भाई जी का भी हम मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस शुभ आगाज के लिए सर्वप्रथम हम परमात्मा को आवाहन, उनका आवाहन करते हुए ईश्वरीय गीत से, परमात्मा की याद से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के साक्षी हुए। राजस्थान राज्य का एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट का शुभारंभ आज होने जा रहा है। ये उसी कड़ी का हिस्सा है जिसकी अभी कुछ झलकियां हम स्क्रीन पर देख रहे थे। 2 मई 2005 को राष्ट्रपति भवन से भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारीज के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसके तहत पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों की सेवा, उनका आत्मबल, उनका गौरव बढ़ाने के साथ साथ इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग अर्थात परिवार के बाकी सदस्यों के साथ उनके संबंधों को मजबूत करना, उनके जीवन में से अकेलेपन को दूर करना, उनका महत्व उनके परिवार में और समाज में बरकरार रखना, इस कार्य को ब्रह्मा कुमारी इस भारत सरकार के साथ मिलकर के करें, ऐसा समझौता ज्ञापन हुआ। उसकी नेशनल लॉन्चिंग दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर से हुई और आज उसी कड़ी में राजस्थान राज्य की जो स्टार्टिंग है, जो शुभारंभ है, वो आज हम माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में यहाँ से कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय एवं मंच पर उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी दीदियों एवं राजयोगी भाइयों का स्वागत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि माननीय मंत्री जी का अभिनंदन भी करेंगे और मंच आसीन सभी हमारे वरिष्ठ दीदियों का एवं भाइयों का भी स्वागत अभिनंदन करेंगे तिलक के द्वारा, पटके के द्वारा। और आप सभी से अनुरोध है कि तालियों की कमी नहीं हो, तालियों की गड़गड़ाहट से हम इस बात का समर्थन देते हैं कि ये जो कार्य आज होने जा रहा है, इस कार्य में हम सब सहयोगी हैं। सरकार के साथ हुए इस समझौते का बहुत ही सुंदर उद्देश्य है। इसका शीर्षक संगम, गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन। संगम, एज विद प्राइड, लिव विद डिग्निटी। और ये बहुत ही सुंदर संगम है। संगम युग का समय चल रहा है और इस संगम युग के समय पर ये संगम ब्रह्मा कुमारी एवं भारत सरकार का भी है। ये संगम समाज में वरिष्ठ नागरिकों और समाज की अन्य पीढ़ियों का भी है। तो इस सुंदर शुरुआत के लिए मैं अभी स्वागत नृत्य के लिए आमंत्रित करती हूँ दिल्ली से पधारी कुमारी साक्षी और कुमारी बरखा को, जो इस हर्ष के भाव को, इस अभिनंदन के भाव को अपने स्वागत नृत्य के द्वारा प्रस्तुत कर रही हैं और हम सबके बीच में आदरणीय संतोष दीदी जी पहुंच चुके हैं, जो कि इस संस्था के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और सोशल सर्विस विंग के चेयरपर्सन भी हैं। दीदी का भी बहुत बहुत कर्तव्य ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। रिस्पेक्टेड संतोष दीदी जी, ज्वाइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, आपका भी हम सम्मान एवं स्वागत करते हैं। तो आइए तालियों के साथ दीदी का भी स्वागत करते हैं और कुमारी साक्षी और कुमारी बरखा हमारे बीच में अपने दिल के उद्गार स्वागत नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करने जा रही हैं। बहुत धन्यवाद कुमारी साक्षी और कुमारी बरखा का, आपने हम सभी का स्वागत किया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम आमंत्रित करते हैं ब्रह्मा कुमारी के मधुर वाणी ग्रुप का, जो कि अपने मधुर वाणी अपने मधुर साज से सभी का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। आइए मिलकर अभिनंदन करते हैं ब्रह्मा कुमार रमेश भाई जी, ब्रह्मा कुमार जयराज भाई जी, ब्रह्मा कुमार प्रताप भाई जी, ब्रह्मा कुमारी स्वरा बहन और ब्रह्मा कुमारी भव्या बहन का, जो कि अपने मधुर दिल के उद्गार अपनी मधुर आवाज के साथ स्वागत गीत के रूप में हम सभी के बीच हम सभी के सम्मुख रख रहे हैं। करतल ध्वनि से आइए हम स्वागत करते हैं आपकी करतल ध्वनि इस बात का प्रतीक है कि हम सभी इस कार्य में, इस सेवा में साथ हैं और पूरे हर्ष के साथ हम भी अपना योगदान अवश्य देंगे।
ओम शांति। शुभारंभ है राष्ट्रव्यापी एक महाअभियान का। माननीय मंत्री जी आए लक्ष्य राष्ट्र उत्थान का, दिल से स्वागत करते आप आए अपने घर पधारे, बेहद हर्षित है कहते हैं चांद सितारे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें।
Oh, सम्मान सभी को देता जो सम्मान सभी का पाता है। वरिष्ठ जनों का तिरस्कार कर सुख शांति को ना खोए।
आधुनिकता की दौड़ में आध्यात्मिकता ना खोए।
सच्चे मन से ज्येष्ठ जनों का गायन हो गुणगान का। स्वागत अतिथि महान का अवसर है सम्मान का। शुभारंभ है राष्ट्रव्यापी एक महाभियान का। बड़े बुजुर्गों के संग में जन जन के कल्याण का। स्वागत अतिथि महान का अवसर है सम्मान का। स्वागत अतिथि महान का अवसर है सम्मान का। अवसर है सम्मान का। अवसर है सम्मान का।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। आपने बहुत ही अपने बोल के द्वारा, गीत के द्वारा, जो इस पूरे समझौता ज्ञापन का लक्ष्य है वो स्पष्ट किया। आदरणीय मंत्री जी, आप सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। और अभी स्वागत तथा संगम, गौरवपूर्ण वृद्ध अवस्था एवं सम्मानित जीवन के विषय में और स्पष्ट बताने के लिए और सभी का शब्दों द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आदरणीय राजयोगी अवतार भाई जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। और ये बताना चाहती हूं, आप 1975 से इस ईश्वरीय ज्ञान का अपने जीवन में पालन कर रहे हैं और 1977 से समर्पित रूप से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय आप राष्ट्रीय संयोजक हैं समाज सेवा प्रभाग के, एवं आप मुख्यालय प्रबंधन कोऑर्डिनेटर कमेटी के सदस्य भी हैं। माउंट आबू संवाददाता हैं राजस्थान पत्रिका के, एवं बहुत सारे पत्रकार संघ के भी आप अध्यक्ष, महामंत्री एवं संरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और समाज सेवा प्रभाग की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको एक सुचारू रूप देना ये आपके अथक सेवा भाव का ही परिणाम रहता है, जिसके लिए आप समय प्रति समय बड़ी दीदियों का मार्गदर्शन लेते रहते हैं, हमेशा सबका सम्मान करते हुए सबको आगे बढ़ाते रहना, ये आपके अंदर परमात्मा ने कला भरी है। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं भाई साहब, ताकि आप शब्दों के द्वारा सभी आज पहुंचे अतिथि गण का स्वागत करें।
ओम शांति। अखिल ब्रह्मांड नियंता, सर्वशक्तिमान परमपिता शिव परमात्मा के प्रिय संतानों, आदरणीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भ्राता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय जालौर सिरोही सांसद भ्राता लुम्बाराम जी चौधरी, आदरणीय परम आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, परम आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी, परम आदरणीय राजयोगी सुषमा दीदी जी, आदरणीय भ्राता स्वामीनाथन जी, परम आदरणीय भ्राता राजयोगी करुणा भाई जी तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित वक्तागण, विद्वान और विदुषी वक्तागण, बड़े ही हर्ष और सौभाग्य की बात है कि आज इस मंच पर विराजित महान विद्वान और विदुषी वक्तागणों का यहाँ इस विशेष संगम, वो संगम, ये संगम वो संगम है जो विभिन्न पीढ़ियों का आपस में स्नेह, सहयोग, सहानुभूति और सामंजस्य स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस महत्वपूर्ण माध्यम के जो पूर्व में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के माध्यम एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और उस समझौता के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पिछले दिनों दिल्ली ओआरसी में इसकी लॉन्चिंग हो पाई हुई थी। लॉन्चिंग के बाद समाज सेवा प्रभाग की ओर से कार्य सेवाएं आरंभ कर दी थी और बहुत सारी सेवाएं यहाँ राज्य ये देश में हो चुकी हैं जो अभी हम इसी सभा में श्रव्य दृश्य के माध्यम से उसकी संक्षिप्त झांकी देख पाएंगे। और आज यहाँ पर जो हम उपस्थित हुए हैं जिसमें मंचासीन विद्वान और विदुषी वक्तागणों से लेकर सभा में उपस्थित आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करने का जो ये अहो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हृदय की अतल गहराइयों से जो आपका हम स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये अपने आप में एक अहम महत्वपूर्ण माध्यम है उन पीढ़ियों का जो आज विभिन्न तरह से जिनका विघटन होता जा रहा है उनको एकत्रित करने के लिए, उन परिवारों की जो हमारे पुरातन काल में जो बृहत परिवारों की श्रृंखला हुआ करती थी जिसमें दादा 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 दादियां होती थी, नाना नानियां होती थी और उनके बीच की पीढ़ी और उनके छोटे बच्चे, बच्चों के माँ बाप और उनके दादा दादी, उन सभी पीढ़ी का एक परस्पर सामंजस्य हुआ करता था, समन्वय हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ समय से, कुछ दशकों से कहा जाए तो ये पश्चिमी सभ्यता, क्योंकि ये जो प्रचार प्रसार के बहुत अत्यधिक माध्यम बन गए हैं, उन माध्यमों के आधार पर जो है क्या है कि पश्चिमी सभ्यता ने हमारे देश में भी अपनी जड़ें पसारनी आरंभ कर दी और उसके कई अच्छे परिणाम भी हुए हैं, लेकिन दुष्परिणामों की भी कोई कमी नहीं रही है। जिसमें एक दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमारी पीढ़ियां सने सने वो विभाजित होती चली गई हैं और उसका ये रहा कि जो बच्चे हैं वो अपने पुराने बुजुर्गों के, क्योंकि उनके अनुभव, उनकी उपलब्धियां और उनके महत्व को जो जीवन में उन्होंने अर्जित किए हैं उसे वो वंचित रह गए। और वंचित रहने से क्या हुआ कि भारतीय जो संस्कृति थी, महान संस्कृति जिसका आज भी पूरी दुनिया में बोलबाला है, आज भी पूरी दुनिया जिसका ये बहुत ही मतलब आदर और सत्कार पूर्वक उसका वर्णन करती है, उसको सुनती है और समझते हैं, वो संस्कृति गायब होने के कगार पर है। गायब तो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत एक अविनाशी खंड है और यहाँ की संस्कृति भी अविनाशी है। और ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस जो ये संगम का परियोजना भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वावधान में जो चल रही है, उसके आधार पर उस संस्कृति का पुनरुद्धार करने का एक प्रयास किया जाएगा और निसंदेह ही ये सफल होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ साथ मैं अब आप सभी भाई बहनों के एक बार पुनः हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप यहां पर आए, विशेषकर मंत्री महोदय और सांसद महोदय, जिन्होंने हमारे बीच में आकर के अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज करवाई, और मंत्रालय से पधारे अधिकारीगण भी यहां आए अपना समय निकाल करके, उन सभी का मैं हृदय की अतल गहराई से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद अवतार भाई जी का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने सभी का स्वागत किया, हमारे बीच में मंत्रालय से भी उपस्थित जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती मिस मनाली ढकाते जी हैं, और अन्य मंत्री, अन्य मंत्रालय से पहुंचे हुए हमारे ऑफिसर्स हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत किया, इसलिए आपका भी धन्यवाद है। अभी हमारे बीच में जल और सिरोही से पधारे सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी जी भी आज उपस्थित हैं, आपका भी इस संस्था से बहुत स्नेह है और आप हमारे सभी गतिविधियों में हमारा सहयोग भी देते हैं, और आज आप समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे हैं। आपका अभिनंदन करते हुए आपके भी दो शब्द शुभकामनाओं के सुनने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए सभी मिलकर करतल ध्वनि से हम आमंत्रित करते हैं माननीय सांसद लुम्बाराम चौधरी जी का।
ओम शांति। आज विश्व ब्रह्मा कुमारी आबू रोड के अंदर इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने बीच में पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकता मंत्रालय भारत सरकार, मैं आपका जालौर सिरोही और जनपद कुमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे यहां आशीर्वाद देने के लिए पधारे, और साथ में आपने विभाग द्वारा जो हमारे परमा कुमारी को दोनों के बीच में जो एमओयू हुआ है, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मंशा के अनुसार जो हमारे गांवों के अंदर जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग विराजे हुए हैं, विभिन्न विभिन्न से बच्चों से लगा करके बुजुर्गों तक विभिन्न विभिन्न समाज सामाजिक न्याय और उसके अंदर समाज कल्याण द्वारा जो विभिन्न विभिन्न संस्थाएं चलाई जा रही है, वो मैं परमा कुमारी से सभी और इस मंच में विराजे हुए अपने इस संस्था के सभी दीदियों को नमन करता हूं, सभी भाइयों को नमन करता हूं, और सामने विराजे हुए सभी पूरे विभिन्न विभिन्न राज्यों से पधारे हुए सभी मेरी बहनों और भाइयों को मैं नमन करता हूं, और जालौर सिरोही की जनता की तरफ से आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे मंत्री महोदय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने जिस दिन से इस संस्था को संभाला है उस दिन से आपकी मेहनत से हमारे देश के प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार गांव गांव के अंदर और ढाणियों के तक पहुंचाया जा रहा है। मैं हमारे जो एमयू हुआ है मैं उनसे भी आपसे यही आशा करता हूं कि गांवों के अंदर और ढोणिया जो ढाणियों के अंदर जहां पर कोई लोग नहीं पहुंच सकते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके संस्था के मार्ग पर पहुंच करके उन लोगों की सेवा होगी जो आप जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। इसी आशा के साथ मैं हमारे अपने मंत्री महोदय को सुनना है एक बार पुनः में मंत्री महोदय का बहुत इस संस्था में और जालौर सिरोही की जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं धन्यवाद जय हिंद ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता लुम्बाराम चौधरी जी का आपने भी अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की एवं सभी का आपने भी स्वागत किया। अब हम एक वीडियो के द्वारा देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट संगम इसके अंदर क्या क्या सेवाएं अभी तक ब्रह्मा कुमारीज कर चुकी हैं न केवल देश में लेकिन विदेश में भी रशिया तक में भी सेवाएं चल रही हैं। तो इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट वीडियो के द्वारा हम सभी अभी देखेंगे।
संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन राष्ट्रीय कार्यक्रम रिपोर्ट भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन अभियान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सम्मानजनक सार्थक और प्रेरणादायक बनाना है। ये अभियान वृद्धावस्था में सकारात्मक सोच सामाजिक सहभागिता और आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ावा देता है। वहीं विघटित हो रही पीढ़ियों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का कारगर माध्यम होगा। इस अभियान का MOU 2 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। इसके बाद इस अभियान का आधिकारिक शुभारंभ 17 अगस्त 2025 को ORC में माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा किया गया। ORC गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर ORC की निदेशिका राजयोगिनी आशा दीदी ने वृद्धावस्था की विशेषताओं और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। आबू रोड के शिवमणि होम में संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन विषय पर वृद्धाश्रम में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें EV स्वामीनाथन भाई ओम प्रकाश भाई उपस्थित बुजुर्गों से अनुभव साझा किए। लखनऊ बाराबंकी में समाज सेवियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वरिष्ठ नागरिकों के जीवन अनुभव और उनके योगदान के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। मुख्य अतिथि श्री शिव शंकर त्रिपाठी एवं सुश्री आरती त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इंदौर अन्नपूर्णा नगर में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। प्रमुख अतिथि वीरेंद्र सृजन और समाज सेवा प्रभाग के सदस्य उपस्थित रहे। सायन मुंबई में संगम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुजुर्गों का सम्मान तथा प्रेरक सत्र आयोजित हुआ। राजयोगिनी संतोष दीदी ने अपने विचार व्यक्त किए। मिर्जापुर में विजयादशमी के अवसर पर बुजुर्गों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वरिष्ठ जन विजय का तिलक लगाकर अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल महसूस कर पाए। दिल्ली खानपुर में BK आशा बहन के नेतृत्व में गुरु विश्राम वृद्धाश्रम में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर प्रेरणादायक कार्यक्रम हुआ। 600 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। वाराणसी गोरखपुर शाहपुर में दीप जलाकर संगम कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ। बुजुर्गों को ईश्वरीय साहित्य और उपरणा देकर सम्मानित किया गया। सुजानगढ़ राजस्थान में 104 वर्ष के नागरमल सहित 60 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। BK कैलाश भाई ने आध्यात्मिक चेतना और जीवन के स्वास्थ्य पर जोर दिया। झोजू कला हरियाणा में 2 दिन बुजुर्गों के सम्मान और राजयोग सत्र आयोजित किए गए। कादमा हरियाणा में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें बुजुर्गों को अपने अनुभवों से समाज और परिवार में मार्गदर्शन करने की प्रेरणा दी गई। राजकोट गुजरात सेवा केंद्र ने युवा और बच्चों को बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला। छतरपुर किशोर सागर सेवा केंद्र के माध्यम से बुजुर्गों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर देने संबंधित कार्यक्रम आयोजित हुए जिसमें 275 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। पश्चिम विहार दिल्ली सेवा केंद्र के माध्यम से भी वरिष्ठ जनों के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ईवी गिरीश, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके बीरेंद्र, बीके सुषमा आदि उपस्थित रहे। भुवनेश्वर यूनिट 9 में 200 प्रतिभागियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक वरिष्ठ नागरिकों के उत्थान एवं समाज सेवियों के लिए असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में 10 दिवसीय अभियान चलाया गया, जिसमें तिनसुकिया असम, रोइंग अरुणाचल प्रदेश, तेजू अरुणाचल प्रदेश, शिवसागर असम, जोरहट असम, दीमापुर नागालैंड, लैमडिंग असम आदि विभिन्न शहरों में कार्यक्रम हुए। 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाने को कार रैली आयोजित की, जो इंदौर से शुरू होकर खरगोन, धामनोद, ठिकरी, झाबुआ, पेटलावद, रतलाम, नीमच आदि मार्गों से होकर भीलवाड़ा में संपन्न हुई। रैली में स्वामीनाथन भाई, इंदौर जोन इंचार्ज राजयोगिनी आरती दीदी, रोटरी के गवर्नर सुशील मल्होत्रा, लायंस गवर्नर अनिल खंडेलवाल, बीके राकेश सहित बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पंढरपुर, उदगीर, कनकवली, पुणे जगदम्बा भवन, पुणे धनकवड़ी, उमरेठ, वदूज, दिल्ली जनकपुरी, दिल्ली ब्रिजपुरी, पटना सिटी, इंदौर, सफीदो हरियाणा, सापला हरियाणा, माया बाजार गोरखपुर, रीवा बीके मार्ग, केंदुझार सरसिंगा ओडिशा, रांची झारखंड, सीकर राजस्थान, अगरतला, शाहबाद मारकंडा, लखनऊ आदि स्थानों पर भी वरिष्ठ नागरिकों हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हजारों लोग लाभान्वित हुए। इस राष्ट्रीय अभियान ने हजारों वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, आनंद और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। सभी कार्यक्रमों में बीके भाई बहने, समाज सेवी और स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहा। ये अभियान वृद्धावस्था में खुशी, स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और आध्यात्मिक चेतना का सशक्त संदेश देता है। हम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके समर्थन से ये ईश्वरीय और सामाजिक सेवा का कार्य इस गति से आगे बढ़ रहा है। समाज सेवा प्रभाग भविष्य में इस अभियान को और विस्तृत तरीके से पूरे भारत में वरिष्ठ जनों के उत्थान और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। ओम शांति।
इन सभी सेवाओं के लिए ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग के सभी मेंबर्स का एक बार जोरदार तालियों के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं, जो कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस एक लक्ष्य के साथ चल रहे हैं कि जब तक हमारे देश के अंदर सीनियर सिटीजन्स का, वृद्ध जनों का सम्मान नहीं होगा, तब तक हमारा समाज शक्तिशाली नहीं बन सकेगा। क्योंकि उनके जीवन भर का अनुभव हमें विरासत में मिलता है, जिसको अगर हम सम्मान सहित अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आने वाले कई कठिनाइयों से हम पहले ही उनकी दुआओं और आशीर्वाद की छत्रछाया से, उनके जीवन के अनुभव से बच सकते हैं। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने अगले वक्ता आदरणीय भ्राता प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन भाई को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप न केवल सोशल सर्विस विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं केरला से, आप एक लाइफ कोच, गाइड, एक प्रोफेसर भी हैं। यूं तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, लेकिन उसके बाद आपने कई अन्य डिग्रीज आपने हासिल की, जिसके अंदर की डिप्लोमा इन डेल्टा हीलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, योगा, क्राइसिस मैनेजमेंट और इमोशनल और क्वांटम इंटेलिजेंस में आप पीएचडी भी हैं। आप एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट फैकल्टी के रूप से भी 16 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते रहे, और वही बीज जो बच्चों के अंदर आपने तब डाला, अब संगम के माध्यम से आप उनके अंदर वृद्ध जनों की इस सेवा का बीज भी डाल रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं स्वामीनाथन भाई जी का।
सर्वोत्तम समाज सेवक शिव बाबा की याद और स्मृति से आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सम्मानित मंच एवं सभा में उपस्थित देवी भाइयों बहनों, ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो बहुत सुंदर अवसर है, जहां पर राजस्थान का स्टेट लॉन्चिंग हो रहा है, तो शुरू करने के पहले मैं जानना चाहूंगा इस सभा में ऐसे कितने भाई बहने हैं जिनका शरीर का उम्र 60 वर्ष के ऊपर हो गया है, वो मुस्कुराते हुए जरा हाथ उठाएं। वाओ, बाकी सभी इनके लिए जरा जोर से तालियां बजाकर हम इनका सम्मान करेंगे। आप सभी यहाँ पहुंचे, आपकी दुआओं के वाइब्रेशंस इस पीढ़ी तक पहुंच रही है। मैं थोड़ा सा बहुत कम समय लूंगा क्योंकि मंत्री जी को हम सभी को सुनना है। इतने समय से जब मैं पिछले अगस्त महीने से जितना भी मैं सीनियर सिटीजन्स के प्रोग्राम में पहुंचा हूं, और मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को ये बताना चाहूंगा कि अगस्त महीने में जब इसका लॉन्चिंग हुआ और आज तक करीब मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा प्रोग्राम हम टच कर पाए पूरे ब्रह्मा कुमारी इसमें भारत में, तो सर आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस 3 साल में हम पूरे भारत को कवर कर पाएंगे, ऐसा हमारा श्रेष्ठ संकल्प है। तो जब भी हम सीनियर सिटीजन से मिलते हैं और उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो मैंने ये महसूस किया है कि उनको दो बातों का थोड़ा फिक्र कहो, डर कहो, चिंता होती है। एक है उनका शारीरिक स्वास्थ्य, द फियर ऑफ डिजीज, और दूसरा होता है मृत्यु का भय, द फियर ऑफ डेथ। और डॉक्टर्स भी इन दोनों बातों को अप्रूव करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा क्योंकि बुजुर्गों की बात चल रही तो ये सत्य घटना है, और मेडिकल साइंस में इसको मिरेकल ऑफ मेडिटेशन के रूप दिया गया है। आज से काफी वर्ष पहले अमेरिका में एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, 65 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी, और उनका नाम था सेमेटेटिस मोराइटिस। कुछ समय के बाद उनको चेस्ट कंजेशन इन्फेक्शन हुआ, तो डॉक्टर्स के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, और जब टेस्ट किया तो पता चला कि वो कैंसर है, टर्मिनल लंग कैंसर। अक्सर जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उनके मन में दो प्रश्न होता है, एक विच स्टेज ऑफ कैंसर एम आई इन, और दूसरा मेरे पास कितना वक्त है। तो सेमेटेटिस ने जब डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आप लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में हो और मैक्सिमम आपके पास 3 से 6 महीने का वक्त है। तो सेमेटेटिस अपनी पत्नी से बात करते हैं और कहते हैं कि यूएसए में जिस शहर में वो रहते थे, बोला यहाँ पे क्रेमेशन चार्जेस बहुत ज्यादा है, जो दाह संस्कार होता है उनके चार्जेस बहुत हाई हैं, तो एक काम करते हैं हम अपने नेटिव गांव में जाते हैं और वहां पर मैं शरीर छोड़ना चाहूंगा। तो वो और उनके पत्नी इकारिया ग्रीस में जाते हैं, उनका वो नेटिव प्लेस था। जब वो वहां पर गए तो उन्होंने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा जिनकी उम्र जो थी 100 वर्ष के ऊपर है, दे वर ऑल सेंचुरियंस, सभी की उम्र 100 वर्ष के ऊपर, और ये बहुत क्लियरली इसको है ना ये एटेस्ट किया गया है, इकारिया इन ग्रीस, आप थोड़ा सा गूगल और इंटरनेट में भी देख सकते हैं। तो जब सेमेटेटिस अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा और सब लोग 100 वर्ष के ऊपर हैं, तो उन्होंने उसका कारण ढूंढने की कोशिश की, और सबसे बड़ा कारण था कि वो सभी लोग बहुत खुश रहते थे, भले राइट मुंह में दांत नहीं होता था फिर भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, हैप्पीनेस। इसलिए कारिया ग्रीस इज कॉल्ड एज अ हैप्पी जोन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू जोन, उसको डेजिग्नेट किया गया है। उनका जीवन शैली बड़ा सात्विक था, वो प्योर वेजिटेरियन डाइट करते थे, आपस में एक दूसरे से मिलकर चलते थे, और सबसे ज्यादा वह देखा गया वो अपना दुख दर्द कम्युनिटी प्रोग्राम में अपने साथ शेयर करते थे। तो सेमेटेटिस जब वहां पहुंचा अपनी पत्नी के साथ तो उनको यही संकल्प आया कि वैसे भी तो मैं मरने वाला हूं तो क्यों ना मैं मुस्कुराते हुए मैं शरीर छोड़ूं, ये उनको संकल्प आया। तो 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, भाई साहब ऊपर जा ही नहीं रहे हैं, और ठीक भी होने लगे, चेहरे में खुशी बढ़ने लगी, मुस्कुराहट बढ़ने लगी। तो पत्नी बार बार पूछे क्या हुआ, ऊपर नहीं जा रहे, तो बोला वो डॉक्टर ने तो कहा था कि 6 महीने में पासपोर्ट वीजा कंफर्म हो जाएगा, अब 2 साल से हम इंतजार कर रहे, कोई स्टैंप ही नहीं लगा रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और वो पूरी तरह ठीक महसूस हो रहा है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा एक काम करते हैं, जिस डॉक्टर ने कहा 3 महीने से 6 महीने हमारे पास वक्त है उनके पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई टर्मिनल लास्ट स्टेज ऑफ लंग कैंसर आएगा तो उनको इकारिया ग्रीस भेजना ताकि वो ठीक हो जाए। तो पत्नी ने कहा आप तो बहुत अच्छा समाज सेवा की बात करो, चलो चलते हैं। तो वो दोनों पति पत्नी जब यूएसए जाते हैं और क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि बहुत वर्ष पहले डॉक्टर पहले से ऊपर चले गए हैं। दिस इज अ रियल स्टोरी, इसे आप इंटरनेट में चेक करेंगे तो कहा जाएगा कि द पर्सन हु वाज एबल टू डिफाइन डेथ was able to win over death. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है खुशी और आनंद के साथ जीना. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मंत्रालय ने ये जो बहुत सुंदर शब्द रखा है संगम, जो ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के लिए एक बहुत भावनात्मक शब्द है, ये संगम शब्द मंत्रालय से आया हुआ. तो एक बार जोर से हम मंत्रालय के लिए और उनके अधिकारी गणों के लिए बहुत प्यार से हम धन्यवाद देते हैं. बस दो मिनट में मैं संगम के 5 पॉइंट्स बस बताना चाहूंगा. सबसे पहला संगम जो उनके MOU को हमने स्टडी किया, तो उनके आधार पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, सबसे पहला मंत्रालय का ये श्रेष्ठ संकल्प है कि भारत का हर व्यक्ति विशेष वरिष्ठ नागरिक का क्वांटिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होना चाहिए. और उसके लिए मंत्रालय के श्रेष्ठ संकल्प के साथ बहुत सारे उनके स्कीम्स हैं. मैं उनके वेबसाइट में भी देख रहा था, इतने सारे स्कीम्स हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या बहुत सारे स्कीम्स. और मंत्रालय चाहता है कि मंत्रालय के ये श्रेष्ठ संकल्प और ये सारे स्कीम्स हैं जो भारत के जन जन तक पहुंचे. तो इन दोनों संगम के लिए वो एक संस्था को ढूंढ रहे थे और परमात्मा की विशेष दृष्टि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर पड़ा. तो पहला संगम मंत्रालय और जन जन के बीच का जो संगम है. दूसरा जो संगम है वो चाहते हैं कि वरिष्ठ जनों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो. तो इसमें शरीर के स्वास्थ्य से साथ साथ मन का स्वास्थ्य, अ संगम बिटवीन फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ. क्योंकि जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ेंगे तो शायद हम चाहते हुए भी शरीर का ज्यादा आसन नहीं कर सकते. मैं 2-3 वृद्धाश्रम में गया था तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग आसन करते हो? तो सभी लोग ने कहा हम्म. तो मैंने कहा, तो एक भाई साहब मुस्कुराए, मैंने कहा, कहते मैं हर दिन आसन करता हूं. मैंने कहा कौन सा आसन करते हैं? मुझे बोला बहुत अच्छा लगता है. मैंने कहा कौन सा आसन करते हैं? तो भाई साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे सबसे अच्छा आसन शवासन लगता है. तो शवासन में एक दिन हम सभी को लेटना पड़ेगा, लेकिन उस शवासन के साथ साथ हर दिन हम लेटते हैं, राइट? जब हम नींद करते हैं, लेकिन नींद करने के पहले मन का एक एक्सरसाइज करना. तो ब्रह्मा कुमारी मन का आसन सिखाती है, मन का व्यायाम सिखाती है, जिसको राजयोग कहते हैं. तो अब संगम बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. तीसरा जो संगम है जो मंत्रालय बहुत प्यार से हम तक पहुंचाया, जो हमारी विद्यार्थी बहन जी भी कह रहे थे, इट इज इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग. जिस तरह वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना. तो बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन तीनों के बीच में संगम. और मैं पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूं, तो इतने फेस्टिवल्स हम लोग साथ में मिलाते हैं, मनाते हैं. और हर दिन हमारी जो मुरली क्लास चलती है उसमें मैंने देखा छोटे बच्चे भी होते, बड़े बुजुर्ग भी होते, माता पिता भी होते हैं. तो नेचुरली इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग बहुत प्यार से हो सकता है. चौथा संगम जो है, राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, योग स्वयं से लगना चाहिए. अर्थात मन को अपने स्व अस्तित्व में टिकाना, अर्थात आत्मा और फिर परमात्मा का संगम. ये संगम सीखना बहुत जरूरत है, क्योंकि अंतिम समय में आत्मा शरीर छोड़कर शिव बाबा के घर परमधाम में जाएगी. तो ये टेक्निक और ये विधि सीखना बहुत जरूरत है. और लास्ट संगम जो परमात्मा ने आकर बहुत प्यार से आकर हमें समय का परिचय दिया और बहुत प्यार से कहा, मीठे बच्चे, अभी का जो समय ये संगम का समय है और वो समय है कलयुग और सतयुग का समय. और परमात्मा ने हमको ये संदेश दिया कि बच्चे, एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहां हेल्थ होगा, वेल्थ होगा, हैप्पीनेस होगा और बहुत सुंदर प्रकृति होगी. तो आप में से कौन कौन उस सुंदर प्रकृति और सुंदर दुनिया का आह्वान करते हैं, वो जरा हाथ उठाएं. वेरी गुड. हम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और उनके अधिकारीगण को ये विश्वास दिलाते हैं कि अगले 3 साल में हम भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचकर आपका ये श्रेष्ठ संकल्प उन तक जरूर जरूर पहुंचाएंगे. आप सभी का पुनः दिल से धन्यवाद और स्वागत. ओम शांति, जय हिंद.
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर स्वामीनाथन भाई जी का. और इतना सुंदर आपने हमें संगम के अलग अलग पहलू से आपने हमें अवगत कराया. तो आइए इसी संगम प्रोजेक्ट की राजस्थान राज्य स्तरीय शुभारंभ के लिए अभी मैं आह्वान करती हूँ सभी हमारे मंचासीन आदरणीय मंत्री जी को एवं सभी वरिष्ठ दीदियों और भाइयों को कि आप सभी दीप प्रज्वलन के द्वारा इस प्रोजेक्ट की राजस्थान स्तर पर शुभारंभ करेंगे और इसके साथ साथ राजस्थान भर से आए हुए अलग अलग जिलों से हमारे भाई एवं बहनें आपसे आज इस संकल्प का ध्वज और इस जिम्मेवारी का कलश भी ग्रहण करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मंत्री महोदय एवं सभी हमारे वरिष्ठ दीदियों और भाइयों को कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की राजस्थान स्तर की आप शुरुआत करेंगे और हम सभी भी जो यहाँ बैठे हैं अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके हम भी इस शुभारंभ में अपनी हाजिरी दर्ज कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगेगा अगर आप सब भी अपने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करें। सभी का आत्म दीपक तो जगा हुआ है, ये स्थूल दीपक जगा करके भी अज्ञान के अंधकार को मिटाने का संकल्प हम सभी ले रहे हैं। और जैसे कहा जाता है दिया दिया अर्थात आपने समाज को क्या दिया, तो ये दिया जगा करके आज यही संकल्प कर रहे हैं कि हर एक को खुशियां ही खुशियां देनी है।
शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं
का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे राजयोगी भाइयों एवं बहनों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं, जो कि यहां से इस मंच से हो रहे इस आरंभ को अपने अपने क्षेत्रों पर लेकर के प्रस्थान करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूं माननीय मंत्री महोदय जी से कि सभी भाइयों को आप ये ध्वज प्रदान करेंगे जो कि इस आरंभ का प्रतीक है। और आदरणीय संतोष दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि सभी बहनों को आप कलश के द्वारा जिम्मेवारी का ये कलश उनको सौंपेंगे। तो सर्वप्रथम जयपुर म्यूजियम की ओर से बीके सुदेश बहन और बीके सोनू भाई आ रहे हैं। हम सभी करतल ध्वनि से ये जिम्मेवारी में आपके साथ हैं, हम इस बात का आश्वासन देते हैं। जयपुर राजा पार्क की ओर से बीके पद्मा दीदी बीके भवानी भाई आ रहे हैं। अजमेर सब जोन की ओर से बीके रेणु बहन एवं बीके अनिल भाई। बीकानेर सब जोन की ओर से बीके पुष्पा बहन एवं बीके नरेश भाई। मधुबन मुख्यालय की ओर से बीके उमा बहन एवं बीके दीपेश भाई। उदयपुर की ओर से बीके निशांत भाई बीके सरिता बहन। जोधपुर की ओर से बीके ईला बहन बीके हैप्पी भाई। श्रीगंगानगर की तरफ से बीके प्राची बहन बीके सुरेश भाई।
चित्तौड़गढ़ से बीके कविता बहन, बीके धर्मेंद्र भाई, बाड़मेर की ओर से बीके संगीता बहन, बीके इंद्रजीत भाई एवं अलवर से बीके अन्नपूर्णा बहन, बीके मुकेश भाई। एक बार हम सभी जोरदार तालियों से इन सभी सेवाधारियों का, जो कि केवल अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन आप एक एक के पीछे पूरी शिव शक्ति पांडव सेना है जो कि इस कार्य को कोने कोने तक लेके जाने वाली है और हम सभी के इस स्वप्न को साकार रूप देने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपने शुभ भावनाएं एवं वरदानी बोल के लिए मैं आमंत्रित करती हूं, आग्रह करती हूं आदरणीय सुषमा दीदी जी, जो कि हमारे बीच में जयपुर से जुड़े हैं। बाल्यकाल से ही आप इस संस्था के संपर्क में रहे हैं, आपने सभी दादियों का सानिध्य प्राप्त किया है और आपने अपने जीवन को समर्पित करके इस संस्था को जो एक विशाल रूप दिया है, न केवल जयपुर, जयपुर तो राजाओं की महाराजाओं की नगरी है, लेकिन वहाँ रहते हुए आपने इस पूरे विश्व के अंदर अपने स्वराज्य को, अपने स्व पर, आत्मा का स्व पर राज्य हो ऐसा राजयोग आपने न केवल साधारण लोगों को लेकिन बड़ी बड़ी हस्तियों को देकर के आपने उनको ईश्वरीय कार्य से जोड़ा है। ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी के भी आप कोर मेंबर हैं और इतने बड़े जीवन के आप अनुभवी 1971 से समर्पित रूप से आपने अपने जीवन में जो तप और जो सेवा आपने अर्जित की है, आज हम आपके द्वारा वरदानी बोल इस प्रोजेक्ट के लिए सुनने चाहेंगे आदरणीय सुषमा दीदी जी।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, दिव्य बुद्धि दाता वरदाता शिव बाबा की प्रिय संताने, आज का दिन हम सब भाई एवं बहनों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। बचपन से इस विद्यालय से जुड़े और हमने ये देखा कि लोग जिन चीजों की चिंता कर रहे हैं, इस विद्यालय ने उन सब बातों को चिंताओं से मुक्त किया। शिव बाबा ने जिस तन का आधार लिया, प्रजापिता ब्रह्मा जो कहलाए, जिनका शारीरिक नाम दादा लेखराज था, वे भी भगवान का माध्यम तब बने जब उनकी आयु 60 बरस से हो गई। केवल ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, उसके बाद जो हमारी कई बहनें आईं, मुझे बचपन का याद है, लौकिक माँ बाप के साथ जब हम लोग ज्ञान में आए तो हमारे जो टीचर थे वो ध्यानी दादी थी। हमारे यज्ञ में एक वरिष्ठ बुजुर्ग बहन ध्यानी दादी इतनी तपस्वी थी और इतनी स्नेही आत्मा थी, जो हर एक को जो भी आता था प्यार से, अगर वो चाय भी पी रही होती थी तो कहती थी आइए पहले आप पीजिए। तो मैंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो देखा वो ये देखा, बड़े हों बुजुर्ग हों, सबके अंदर बाबा ने देने की भावना अच्छी तरह से कूट कूट कर भरी हुई थी। लौकिक दुनिया में आज जब लोग, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, मैंने तो देखा आजकल तो यंग भी 50 बरस वाले, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। पहली बात, हमारी दादियों ने बड़े भाइयों ने कभी नहीं कहा हम बूढ़े हो गए, और उसका कारण ये रहा कि हमने शिव बाबा के जो महावाक्य रोज हम सुनते हैं उसमें बाबा का जो संबोधन है, पहला शब्द होता है मीठे बच्चे। तो बाबा, शिव बाबा ने हम बच्चों की कॉन्शियसनेस ही चेंज कर दी। पहले तो हम छोटे थे ही जब ज्ञान में लौकिक माँ बाप के साथ आए, लेकिन आज जब हमारी आयु बड़ी हो गई है शरीर की, तो भी हम कई बार काम करते हैं तो ऐसे भागते हैं जैसे कोई बच्चा ही जा, फिर बाद में लगता है नहीं भाई थोड़ा संभल के अब आयु। तो ज्ञान के आधार से हमारी कॉन्शियस टोटल चेंज हो जाती है। तो परमात्मा हम सर्व आत्माओं के पिता हैं और हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो केवल हम कहते नहीं हैं कि तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, लेकिन ये प्रैक्टिकल में यहां शिव बाबा हमको महसूस कराते हैं। बड़ी आयु होने के बाद भी ऐसा लगता है हम तो बच्चे ही हैं, कोई कुछ कहता है तो जल्दी से ये कॉन्शियस ही पैदा नहीं होती कि हम बड़े हैं। तो ज्ञान और योग के द्वारा, राजयोग की शिक्षा के द्वारा, हमारी सबसे पहली बात है कि कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, जिसके कारण नेचुरल सबके साथ हमारा स्नेह रहता है, रिस्पेक्ट रहता है। और आज लोग 50 बरस के, हम तो बूढ़े हो गए हैं, बीपी है, शुगर है। अगर हमारी कॉन्शियस ये बन जाए मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, आज सवेरे आंख खुलते आपके अंदर से निकलेगा शिव बाबा मैं आपका बच्चा, एकदम स्वस्थ। जो भी भाई बहन या आए हैं, अपने अंदर इस भावना को पक्का कीजिए, आंख खुलते ही गुड मॉर्निंग शिव बाबा, मैं आपका बहुत लाडला सिकिलदा बच्चा हूं। तो जैसे ही ये बच्चे की भावना हमारे अंदर पैदा होती है तो हमारी 80% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। कौन सी समस्या, मैं खुद ही बच्चा हूं, शिव बाबा की छत्र छाया में हूं, बाबा स्वयं मेरे साथी हैं, इस खुशी, बच्चा माना जो सदा खुशी में है। आप देख लीजिए बच्चे को चाहे चमाट लगा दो, 2 मिनट रो लेता है बच्चा भी, फिर उठ के वैसे ही भागने लग जाता है। और किसी बड़े को आप थोड़ा सा कह तो दो कुछ अकल है कि नहीं, वो 10 दिन आपसे मुंह फेर के चलता है। तो बचपन और बड़ेपन में ये अंतर है, बच्चा हर बात को जल्दी से भूल जाता है। शिव बाबा भी हमें कहते हैं बच्चे बीती को भूलो, अभी सवेरे किसी ने मेरे साथ गलत किया भूल जाओ, अभी आने से 5 मिनट पहले किसी ने मुझे गलत कहा फॉरगेट इट। तो ज्ञान और योग से ये जो भूलने की कला है, अच्छी बातें नहीं भूलनी है, अच्छी तो याद रखनी है। कई लोग कहते हैं उम्र हो गई है भूल जाते हैं, अगर आप ये अभ्यास चालू कर लें कि मुझे हर नेगेटिव गलत बात लेट इट गो, लेट गो करें, तो आप पाएंगे लेट गो करने से ही हमें कभी भी भूलने की आदत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छी बातें हमारे अंदर सदा ही हमें याद हैं। एक छोटी सी बात जो शिव बाबा ने हम बच्चों को सिखाई है वो ये है कि जब हम भोजन स्वीकार करते हैं, चाहे वो नाश्ता हो, दोपहर का हो, रात का हो, स्वीकार करने से पहले शिव बाबा को भोग लगाएं, शिव बाबा को याद करें, शिव बाबा को थैंक्स दें, बाबा आइए ये मीठा प्यारा भोजन स्वीकार करें। मीठा प्यारा भोजन माना जो दुआओं से भरा हुआ, मीठा माना जरूरी नहीं कि उसमें गुड़ शक्कर चीनी पड़ा है, लेकिन शुद्ध भावनाएं, शुभ भावना से जो भरपूर भोजन है शिव बाबा को थैंक्स देके स्वीकार करते हैं, तो हमारी सारी समस्याएं, बीमारियां, ये तो हम आपको गारंटी देते हैं, आप 15 दिन करिए, चाहे सवेरे चाहे दोपहर चाहे रात, मुझे भोजन नाश्ता कुछ भी खाने से पहले शिव बाबा थैंक यू, शिव बाबा आ, बस दो ही बातें। आप देखिए आपके अंदर कितनी एनर्जी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए अपने इस 60 बरस की आयु के बाद के जीवन के लिए क्या चाहिए, लोग किस चीज के लिए चिंतित होते हैं, कहते हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, हमारी यहाँ क्या जरूरत है, अब तो ये यूथ ही अपने आप को बहुत सयाना समझते हैं, अब हमें तो हमारी कोई भी यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन प्यारे भाई बहनों, मैं आपको गारंटी से बताती हूँ कि बच्चों को बड़ों की छत्र छाया की अति अति आवश्यकता है, लेकिन वो छत्र छाया तब है जब हम उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको हम सहयोग देते हैं। अगर हम केवल क्रिटिसाइज, तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम ये क्यों पहनते हो, तुम ये क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप जितना प्यार से उनको एप्रिशिएट करते हैं, जितना प्यार से उनको आगे बढ़ाते हैं, वो आपको अपने आप ही स्वीकार करते हैं। और ये अपना जीवन रिस्पेक्टेड बनाने के लिए शिव बाबा ने हमें एक ही बात कही है, बच्चे अपने जीवन में दिव्यता, डिविनिटी को धारण करो। क्यों? हम शिव बाबा के घर में आए हैं मनुष्य से देवता बनने, मानुष से देवता किए करत न लागी वार, नर नारायण बने, नारी लक्ष्मी बने, यही हमारे विद्यालय का लक्ष्य है। तो हम यहाँ नर नारायण नारी लक्ष्मी बनने के लिए आए हैं। आप सब भाग्यवान देवी और देवता बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इसी उमंग में रहें और इसी उमंग से सबको सहयोग दें, आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
आपके इन अनमोल वचनों के लिए दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने कम शब्दों के अंदर सभी का संबंध शिव बाबा अर्थात परमात्मा से जुटाया। कैसे हमारा आहार, हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारा संसार मीठा बन सकता है, उसके लिए क्या स्मृति हमें रखनी है और छोटों की क्या जिम्मेवारी है, बड़ों की क्या जिम्मेवारी है, आपने हमें स्मृति दिलाई, इसका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद दीदी जी। और अब मैं अनुरोध करती हूँ हम सभी के बीच पधारे हमारे संस्था ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, जो कि मुंबई साइंस से हमारे बीच में हैं। आप न केवल ब्रह्मा कुमारीज के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, लेकिन पूरे ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जोन को भी आप संचालित करते हैं और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सोशल सर्विस विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं। आपकी दूरदर्शिता, आपका मातृत्व, आपका स्नेह से समझाना इस पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्था में हर एक के अंदर बल भरता है, हर एक के अंदर शुद्धता और हर एक के अंदर आपसी व्यवहार के अंदर समरसता भरता है। तो ऐसे राजयोगिनी जिन्होंने इतने वर्षों की तपस्या अपने जीवन में अर्जित की है, उनके अनमोल वचनों से आज हम सभी लाभान्वित होंगे। आदरणीय संतोष दीदी जी।
ओम शांति। हमारे अति आदरणीय भ्राता वीरेंद्र जी और प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन बहुत ही हर्ष का दिन है, क्योंकि खास बुजुर्गों के लिए जो हम लोगों ने और खास गवर्नमेंट से मिलकर जो प्रोग्राम बनाया, जिसके द्वारा समाज में आज जो हमें विसंगति दिखाई पड़ती है, खींचातान दिखाई पड़ती है, अगर उसको अच्छी तरह से समझा जावे तो उससे आपसी मतभेद एक दो को दुख देने की जो बात है उससे हम दूर हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा जो बड़े हैं, बड़ों के पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना है। हमेशा कहा जाता है सुनी हुई बात भूल सकते हैं, देखी हुई बात भूल सकते हैं, परंतु अनुभव की हुई बात कभी भी नहीं भूल सकते। तो जो जितने जितने बड़े होते जाते हैं, अनेक अनुभव जो है उसका खजाना उनके पास भरा जाता है, परंतु हमारा अनुभव औरों के काम में आवे, छोटों के काम में आवे, इसके लिए हमारी रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, रहम की दृष्टि, स्नेह की दृष्टि अगर रहे तो, जैसा अभी हमने सुना कि बड़ों की छत्र छाया उनके ऊपर होनी चाहिए, छोटों को बड़ों के लिए प्यार, रिस्पेक्ट, और बड़ों को छोटों के लिए प्यार, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर लेना और देना ये दोनों भी साथ साथ में चलते हैं। तो जितना जितना आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा हमारे अंदर आती जाती है, उतना उतना छोटा हुए या बड़ा हुए उसको रिस्पेक्ट देने की भावना हमारे अंदर बढ़ती जाती है, क्योंकि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। और ये जो कॉन्शियस बैठ जाता है कि हम बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो अभी सुषमा बहन जब भी सुना रही थी तो मेरे को जानकी दादी याद आ रही थी। जानकी दादी 103 बरस की हो गई थी, उनके आगे अगर कोई 60-70 बरस की बड़ी आयु वाली बहन माता कोई ऐसी आती थी थोड़ा कंबर को झुका के, तो दादी कहती थी ये बिचारी बहुत बुढ़ी हो गई। तो हमें बड़ी हंसी आती थी, हम कहते थे आपसे भी बुढ़ी हो गई क्या ये दादी, ये तो उससे पूछो तो सही, वो कितने बरस की है। कहेगी दादी मैं ना, मेरे को ना 60 बरस से ऊपर हो गया है। तो ऐसा लगता था देखो दादी लास्ट जब 103 बरस की हुई उस समय भी दादी एक प्लेन छोड़ के दूसरा प्लेन पकड़ती थी, दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ती थी, सब जगह पर उस सेवा के लिए भागती थी और दौड़ती। तो हमें बड़ा ख्याल होता था। मैं दादी को बोलती थी, क्योंकि शुरू में जब भी मैं आई तो मेरे को साकार बाबा ने दादी के पास पूना में भेजा था, तो उस समय मैं दादी को, दादी के साथ हमारा विशेष प्यार था, मैं दादी को बोलती थी दादी आप इतना क्यों मेहनत करते हैं, इतना क्यों भागते हैं, हम लोग हैं ना हम भागेंगे, आप एक जगह पर बैठ के आशीर्वाद दो। दादी बोलती थी नहीं, मेरे को जो बाबा ने दिया है वो मुझे सबको देना है। तो वो जो देने की भावना थी कि मेरे अनुभव से अनेक आत्माओं को फायदा होगा, वो देने की भावना उनको छोटा बच्चा बना दिया था। और कभी भी उनको अपनी आयु का, चाहे कोई भी दादी थी हमारी, परंतु कभी ऐसा नहीं लगा, ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा ही था। लास्ट मोमेंट तक बाबा हम बच्चों को विशेष कितना बड़ा महामंत्र देके गए, इतनी बड़ी आयु होते हुए, तबीयत ठीक नहीं होते हुए भी, अंत के समय भी बाबा ने हमें यही महामंत्र दिया कि निराकारी भव, निरंकारी भव और निर्विकारी भव, ये महामंत्र देके और पुराने शरीर का त्याग किया। परंतु हम देखते थे बाबा की 93 बरस की आयु थी, पर बाबा कभी झुक के नहीं बैठता था, हम लोग तो कभी झुक जाते हैं, बाबा एकदम सीधा बैठते थे। टाइम्स पेपर बिगर चश्मा पढ़ते थे, मतलब इतना उनके अंदर था कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो हम सभी के आगे ऐसे आदर्श हैं कि अगर हम अपने अपनी जो वृद्धावस्था है उसको अगर सचमुच समाज सेवा में लगाते हैं, औरों को देने की भावना रखते हैं, तो हम कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। वैसे भी देखा जावे तो देवताएं कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आपने कोई चित्र देखा है ऐसा कि देवता बूढ़ा है? तो जब हमको देवता बनना है तो हम काहे को बूढ़े हो गए? हम भी बूढ़े नहीं हो गए, हमें छोटा बच्चा बन करके और बाबा का बच्चा बन के सर्व को बाबा का संदेश देने का काम करना है। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही, हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ दिल्ली में भी हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ में हैं। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा, अभी अभी वो वृद्धाश्रम भी देख करके आए अपने यहाँ जो है ओल्ड एज होम। तो हमने कहा ऐसा दूसरा भी बनने का सोच, बनाने का प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पर आने के बाद उनके जीवन में एक ऊर्जा आ जाती है, खुशी आ जाती है, और हमेशा कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो खुशी की खुराक खाता है वो कभी बीमार भी नहीं होता है, बूढ़ा भी नहीं होता है, और मरता भी नहीं। आप कहेंगे मरेगा कैसा? नहीं, क्योंकि मरना ये दुख का शब्द है, परंतु यहाँ मरने को मरना नहीं कहते हैं, एक पुराना वस्त्र छोड़ के नया वस्त्र लेना कहते हैं। तो जब नया वस्त्र पहनना होता है तो खुशी होती है, दुख थोड़ा ही होता है। तो ये समझ होने के कारण, ये ज्ञान होने के कारण हम सदा के लिए क्या हो जाते हैं, खुशी से झूमते रहते, औरों को भी झूमाते रहते। तो ये जो खास अभी प्रोग्राम बना हुआ है, इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा सारी जनता को मिले, और जो हमारे भारत का शुरू से लेकर एक सिद्धांत है वसुदेव कुटुंबकम, सब इकट्ठे रहने वाले, सब आपस में प्रेम से चलने वाले, ये वापस भारत वैसा ही बन जावे, सब एकजुट होकर के, एक मत होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनावे, सभी को सुख देवे और उनसे सुख लेते रहे, इसी भावना के द्वारा यही हमारी शुभ आशा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई बहन ये कार्यक्रम रख के औरों को इसका फायदा दिलावे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी का। सच में अगर आप बड़े हमारे सामने ना होते तो हम सभी जो इस सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं, इस तपस्वी जीवन में चल रहे हैं, अगर आपकी छत्र छाया नहीं होती तो ना हमने बाबा को देखा ना मम्मा को देखा। हम तो आपके अनुभवों से ही आगे बढ़ रहे हैं, और जीवन में क्या बड़ों का महत्व है ये इस संस्था में हम भली भांति जानते हैं। इसलिए एक बार आप सबके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद की तालियां, जो आप हर समय हमें ईश्वर से, परमात्मा से जोड़ते हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमें इतना मार्गदर्शन देते हैं। और इन्हीं भाव को व्यक्त करने के लिए अभी एक नृत्य नाटिका आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो गीत बनाया गया है विशेष ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। दो गीत बनाए गए हैं जिनको हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी सुना और जिनका उद्घाटन भारत सरकार ने भी किया है, और उसी एक गीत पर जो कि गाया गया है चांद भाई के द्वारा और इसको लिखा गया है ब्रह्मा कुमारी सपना बहन के द्वारा। इस गीत पर हमारे बीच में दिल्ली के पश्चिम विहार से टीम आ रही है, जो कि इस प्रस्तुति के द्वारा ये दर्शा रही है कि कैसे माता पिता आने वाली पीढ़ी की परवरिश करते हैं, अपने अनुभवों से, अपनी उपस्थिति से उनको हर प्रकार के भय से निश्चिंत करते हैं, उनकी सभी मुश्किलों को आसान करते हैं। तो आइए मिलकर के पश्चिम विहार दिल्ली से पधारे कलाकार बीके साक्षी, बीके बरखा, बीके बलविंदर, बीके रजनी, बीके आरती, बीके दिव्या, बीके रूमी और बीके अरुण, आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस लघु नृत्य नाटिका के लिए।
उनके हर अनुभव की जो देते हमें समझानी, इन्हीं को कहते दादा दादी, इन्हीं को नाना नानी। इनसे अच्छी लगती सुननी हमको रोज कहानी, सदा ही इनके चेहरे पर मुस्कान हमें है लानी, मुस्कान हमें है लानी।
हर दम हमारे जो साथ खड़े, हर दम हमारे जो साथ खड़े,
वो है हमारे बुजुर्ग बड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े,
वो है हमारे बुजुर्ग बड़े। कोई खौफ नहीं घर लगता इन्हीं के होने से, हर डर से हमको बचाते ये, डर जाते हमारे रोने से, इनका बैठे रहना भी हम सबके लिए सुरक्षा है। क्या खूब बनाया इन्होंने ही जीवन का हमारे नक्शा है, जो हर गुण के मोती से हमको जड़े, जो हर गुण के मोती से हमको जड़े,
वो है हमारे बुजुर्ग बड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े।
चलो प्यार और सम्मान हम इनके जीवन को भर दें, जो ये हमसे चाहते वो आशाएं पूरी कर दें, हाँ इनकी सेवा करके आओ पाले हम सब जन्नत, इनकी दुआएं करती पूरी जीवन की हर मन्नत। जो मुश्किलों से हमारे लिए है लड़े, मुश्किलों से हमारे लिए है लड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े, वो है हमारे बुजुर्ग बड़े।
जीवन के हर अनुभव की जो देते हमें समझानी, इन्हीं को कहते दादा दादी, इन्हीं को नाना नानी। इनसे अच्छी लगती सुननी हमको रोज कहानी, सदा ही इनके चेहरे पर मुस्कान हमें है लानी, सदा ही इनके चेहरे पर मुस्कान हमें है लानी,
मुस्कान हमें है लानी।
बहुत बहुत धन्यवाद पश्चिम बिहार से, दिल्ली से आए हुए सभी कलाकारों का। हमें सभी के चेहरों पर मुस्कान लानी है, और यदि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा खुश हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो वो छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहती है और पूरा परिवार ही खुशहाल रहता है। एक हंसता खेलता परिवार ही एक स्वस्थ जीवन की नींव है। आपने हमें इस लघु नाटिका के द्वारा बताया कि कैसे घर के अंदर हर एक का अपना महत्व है,
और हर एक के योगदान से। बड़े बुजुर्ग सिर्फ ये ना सोचें कि हम अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, आप उन्हें पाल रहे हैं अपने अनुभवों से, अपने मार्गदर्शन से। आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। यही मैसेज इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम जन जन तक लेके जा रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय आशा दीदी जी, जो कि दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका हैं, और आपके द्वारा ही ये MOU भारत सरकार के साथ साइन हुआ है, तो ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आपने ही इस MOU को साइन किया है और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपकी बहुत अहम भूमिका है। आप भी बाल्यकाल से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और अपने जीवन में 5 दशकों से भी अधिक आपने सेवाओं में अपना जीवन जो दिया है, आज आपके अनुभवों से भी, आशीर्वचनों से भी हम सभी प्रेरित होंगे। आदरणीय आशा दीदी जी,
ओम शांति। आज के मंच की शोभा आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, हमारी संतोष दीदी, मेरे साथी वक्ता, ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल राता करुणा भाई, और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी अभी हमने देखी। मुझे याद आ गया, मैंने पहले भी शायद कभी शेयर किया है, किसी ने हमसे पूछा कुछ समय पूर्व कि आपकी संस्था में बुजुर्गों का क्या करते हैं, तो वो मेरे लिए तो बड़ा अटपटा प्रश्न था कि बुजुर्गों के साथ या बुजुर्गों के लिए हम क्या करते हैं। मैंने कहा हम उनके साथ रहते हैं, वे अनुभवों की खान हैं, दुआओं के वृक्ष हैं, हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं। क्या आपके यहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती बुजुर्गों के साथ? नहीं, क्योंकि शिक्षा हमें ऐसी मिलती है जिससे हमारे बुजुर्ग सदा हमारे गाइड के रूप से, अपने अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है। सच बताऊं, आज यहां आने से पूर्व कल मैंने 3 बुजुर्गों से बात की टेलीफोन पर, और युवाओं से भी बात की। बुजुर्गों से मैंने पूछा आप कैसे ग्रेसफुली, एजिंग ग्रेसफुली, गौरवपूर्ण रीत से वृद्धावस्था को स्वीकार करना आप कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, आपने क्या सिद्धांत बनाए। बहुत अच्छी बातें कही, जो हैं तो कॉमन, लेकिन धारणा और व्यवहार मिलाने योग्य हैं। अब हमारा काम सबको प्यार देना है, दूसरा हमारा काम सबको आशीर्वाद देना है, तीसरा हमारा काम सबको दुआएं देना है, और कई बार हम कई बातें समझ नहीं पाते तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। आज इस एज में भी वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, ये एक बहुत ही सीखने वाली बात है कि व्यक्ति को सीखने के लिए कोई आयु नहीं होती, जीवन के अंतिम क्षणों तक सीख और सिखा सकता है। इसी रीति उन्होंने कहा एडजस्टमेंट, घर के माहौल को देखना होता है और माहौल के अनुसार अपनी बात को रखना होता है, अदरवाइज उन्होंने बहुत सुंदर फॉर्मूला कहा, एक चुप सौ सुख। जहां आप कुछ कर सकते हैं करें, जहां नहीं कर सकते चुप रहना सदा लाभप्रद है। युवाओं से पूछा, युवाओं का कहना क्या था कि हमें प्यार चाहिए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए, हम चाहते हैं कि वो हमें कुछ कहें, हमें गाइड करें। मैंने कहा आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एजुकेटेड, बहुत नई नई पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ है। नहीं, हमारा दिल कहता है कि हमारे बुजुर्ग हमें कुछ कहें। दोनों ही ओर से कॉमन बातें हैं और इस ओर मंत्रालय ने जो कदम उठाया है वो सच में बहुत सराहनीय है। अपने देश की संस्कृति जो सदा प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए सुखदायी रही है, उस संस्कृति को पुनः उजागर करने का कार्य आप कर रहे हैं। आजकल हम लोग कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत का विकास घर घर स्वर्ग तब बनेगा, भारत का विकास तब होगा जब अपनी वृद्ध अवस्था वालों के पास जो अनुभवों की संपत्ति है उसका हम उपयुक्त प्रयोग करेंगे। बुजुर्गों के विकास के साथ भारत का विकास है, उन्हें छोड़कर विकास नहीं हो सकता। क्या ही अच्छा हो, मंत्री महोदय जी आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी, हम 1 अक्टूबर डे ऑफ एल्डर्स मनाते हैं, क्या ही अच्छा हो कि यदि कभी हम ग्रैंड पेरेंट्स डे भी मनाना शुरू कर लें, दादा दादी नाना नानी डे भी मनाना शुरू कर लें, तो वो जो जेनरेशन गैप है समाप्त होगा। हम लोग मन की बात एक कार्यक्रम दिल्ली में किया करते हैं, मन की बात, जिसमें दोनों जेनरेशंस को हम इकट्ठा करते हैं और वे अपने दिल की बात कहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, कार्यक्रम के अंत में इतना मार्मिक दृश्य होता है, बड़े बुजुर्ग की आंखों में भी आंसू होते हैं और बच्चों की आंखों में भी आंसू होते हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं, चूम रहे होते हैं। वह दृश्य हम चाहते हैं भारत के कोने कोने में आ जाए, जहां बुजुर्ग और बच्चे बैठ करके हिल मिल करके बातचीत कर सकें, उत्सव बना सकें, एंजॉय कर सकें, और वो दिन अवश्य होगा। मैं बताना चाहूंगी, हमारी सुषमा बहन ने, हमारी संतोष दीदी ने मेंशन किया अपनी दादियों का, बुजुर्ग बहुत मोटिवेटिंग होते हैं। दादी प्रकाशमणि को सारे ईश्वरी विश्वविद्यालय की बागडोर संभालने का कार्य कब मिला, जब वो 60+ थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पर लेके आया, कोई कम बात नहीं थी। केवल मूल्यों के आधार पर, केवल आध्यात्मिकता के आधार पर, केवल अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, और दादी जानकी 65 years की जब थी, जब अराउंड 65 या जब वो रिटायर होते हैं दुनिया में लोग, उस समय उनको जिम्मेवारी दी गई, आप भारत की संस्कृति को विदेश में लेके जाएंगे, वहां उसका बीजारोपण करेंगे। और दादी जानकी ने 147 देशों में वो बीज बोया, कोई कम बात नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, जहां जहां मैं जाता हूं एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनें न मिलती हों, एक भी देश ऐसा नहीं है। कब हुआ? प्रौढ़ अवस्था में हुआ। अवस्था की बात नहीं है, अवस्था के सशक्तिकरण की बात है। हमें एज को नहीं, लेकिन उस एज को मोटिवेटिंग कैसे बनाएं, उस एज को एम्पावर कैसे करें, वो जरूरी है। और इसमें अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदा मंत्रालय का सहयोगी रहेगा, इतना मैं अवश्य इस मंच से आश्वासन देती हूं। तीन शब्द, अवॉइड, ऑल्टर एंड एक्सेप्ट। जिन बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कर जाएं, दोनों के लिए जरूरी है। जिन चीजों को हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम खुशी खुशी कर लें। और जब दोनों ही नहीं हो पाता तो बुद्धिमानी यही कहती है उसको स्वीकार कर लें। स्वीकार करने में आध्यात्मिकता बहुत सहयोग देती है। मैंने देखा मंत्रालय के कार्यक्रम में आध्यात्मिकता को भी महत्व दिया गया है, और ये सच है, आध्यात्मिक शक्ति से ही वो समय हम समीप लाएंगे जब जो स्वप्न हम देख रहे हैं वो साकार कर पाएंगे। इसके लिए समय प्रति समय, हमने लास्ट ईयर किया एमओयू साइन करने के बाद, हमने ये कार्य किया दिल्ली में, गुरुग्राम में, बुजुर्गों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें बुजुर्ग ही पार्ट लेते हैं। सबके अंदर बहुत अच्छी कलाएं हैं जिसकी अभिव्यक्ति करते हैं, इसी रीति से बुजुर्गों के लिए स्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरह उन्होंने भाग लिया। अगर कुछ एक बातें हम समझ जाएं अपने युवकों की, उनकी इच्छाओं को समझ लें, तो वो दिन हम समीप ला सकेंगे। इतना कहते हुए मैं ये कहूंगी, हम मंत्रालय के शुक्रगुजार हैं, आपने दोनों गीतों को ऑफिशियली मंत्रालय से लॉन्च किया और वो गीत अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी हम आश्वासन देते हैं कि हम अधिक से अधिक कार्यक्रम करके इस ये जो गैप है इसको हम संपन्न करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा दीदी जी का। और ये बात सत्य है कि जब इस संसार की वृद्ध अवस्था होती है कलयुग में, तो परमात्मा आकर के हम सबको बच्चा बना देते हैं। और परमात्मा के वो बच्चे, चाहे शारीरिक आयु उनकी कोई भी हो, इस संस्था में रिटायर शब्द नहीं है। ब्रह्मा बाबा से लेकर जितने भी हमारे मुख्य रहे, सब के सब अपनी जिसको दुनिया में वृद्ध अवस्था कहते हैं, लेकिन ईश्वर के बच्चे बनकर। और उस समय पर भी ब्रह्मा बाबा ने जिनको शक्तिशाली बनाया, वो उस समय पर छोटे छोटे बच्चे जो बाद में दादियां बने, और आज भी इस संस्था के अंदर छोटे छोटे बच्चे युवाओं को, यही हमारे अनुभवी रतन, हमारे इस संस्था के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ऐसे ही अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय भ्राता करुणा भाई जी का, जो कि इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेक्रेटरी जनरल हैं। आइए करतल ध्वनि से हम
आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं। आपको हम सुनना चाहेंगे। आप ब्रह्मा कुमारीज के मल्टीमीडिया के भी चीफ हैं। आप जितना भी पब्लिक रिलेशंस ब्रह्मा कुमारीज का है, जितनी भी शुरुआत टेक्नोलॉजी की ब्रह्मा कुमारीज में हुई है, लिस्ट इज लॉन्ग, आपने उन सभी की शुरुआत की है। और जैसे आपका नाम है, हमारे साकार ब्रह्मा बाबा फाउंडिंग फादर के समय से आप अपने उन्हीं करुणा के गुणों को फैलाते हुए पूरे संस्था में आज आपने वो बीज करुणा के बोए हैं जो कि हमारे परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने आपके अंदर वो लौ जगाई। आप मीडिया के द्वारा सभी के अंदर वो लौ जगा रहे हैं। आदरणीय करुणा भाई जी से भी अनुरोध है कि आप भी अपने अनुभवों के वचनों से हमें लाभान्वित करें।
ओम शांति। आज का विषय आप सभी बहुत कुछ सुन चुके हैं, तो कल प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी में आवाज कम और कार्य ज्यादा होता है, उन्होंने बताया था। तो मैं भी जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो पहली बात तो मुझे बताया गया कि जो हम लोग सिनेमा देखते थे तो उसके लिए इन्होंने बताया कि सिनेमा सिन माँ पाप की माँ है। ये शब्द मैंने वहां से पहली बार सुना था। तो मुझे ऐसे भी दिन जब पढ़ाई पढ़ रहे थे तो दिन में कभी छुट्टी पर या एग्जाम के बाद एक दो फिल्म देखते थे, परंतु जब से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया तो आज तक 1960 से मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो जाके फिल्म देखने की जो हैबिट था वो नहीं। तो जो हमारे साथ के जो भी भाई बहने रहे तो उन्होंने भी देखा कि जैसा हम करते हैं तो उन्होंने भी ऐसे अपना जीवन में भी इसका अभ्यास किया। तो अर्थात तो जो हम करते हैं उसको देख करके जो फॉलो करते हैं तो वो समाज सेवा जो है। वैसे तो आप जानते हैं कि लायंस है, रोटरी है, जिसमें भी मैंने भी काम किया था, देखा था, तो उनों की भी जो सेवा है वो भी बहुत अच्छा है, जरूरी है, परंतु हमारी जीवन को देखते हुए कोई अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो इस बात को ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमने सीखा। वैसे आज हम सभी कहते हैं कि भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो अपने परिवार के लिए भी टाइम नहीं है उनके पास। कभी सैटरडे संडे हो या जब छुट्टी हो तो तभी, परंतु ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको सिखाया गया तो प्रार्थना करने का, पूजा करने का, ईश्वर को याद करने का जो समय है वो सुबह का, जिसको अमृत वेला कहा जाता है, 4 से 5 बजे। तो हम आज लाखों भाई बहने जहां भी है विश्व में, तो हम अपना ये जो अमृत वेला समय जो है तो हम अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए जब ईश्वर का ध्यान करते हैं तो परिवार में भी वो एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। घर में भी जो भी परिवार है तो वो लोग भी इसको अभ्यास करते हैं, तो जिससे जो हमारे भारत में जो संस्कृति है तो उसको प्रैक्टिकल में हम जितना लाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। जो भारत को हम चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, तो विश्व गुरु बनने की जो भारतीय संस्कृति है, ईश्वर के प्रति हम सबका प्रेम है, तो वो जब जागृत होती है हम प्रैक्टिकल में जब करते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप सभी यहां आए हैं तो 3-4 दिन आप यहां रहेंगे तो आप अपना ये अमूल्य समय ईश्वर की प्रार्थना के लिए करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। दूसरी बात, जो शिक्षक है सोसाइटी में तो उनके ऊपर बहुत कुछ है। जो हमारा देश को हम कहते हैं कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा है, तो उन्होंने ये संस्कृति आने का, माँ बाप के पास समय नहीं होती है तो आप जानते हैं जो इनका फ्रेंड्स है, जो भी बुरी आदत होती है जो अपने साथ जो रहते हैं दोस्त है उनसे होता है। जैसे पंजाब के लिए बहुत सोचते थे कि भाई इस तरह से उन्होंने एडिक्शंस जो होती रही है तो बहुत कुछ सुधार हुआ है, परंतु सारे पंजाब के लिए एक ऐसा कहा जाता था। तो इसीलिए तो शिक्षक वर्ग जो है इस समय पर तो समाज की प्रगति के लिए उन द्वारा जो अपने लाइफ से वो लोग जो बच्चों को सिखाते हैं तो वही उन्होंने आता है। तो ये कह दे सिगरेट नहीं पीना तो टीचर सिगरेट पीता हुआ देखेंगे बच्चे तो आप सोचिए कैसे हो सकता है। फिर भी माँ बाप ही रेस्पॉन्सिबल पहला गुरु है, तो बच्चे को ये कह दे कि बे फोन आता है तो कह देना पापा घर पे नहीं है। तो इस प्रकार जो शिक्षा हम बच्चों को कॉपीकैट्स कहते हैं तो बच्चे माँ बाप से पहले सीखते हैं। तो इसीलिए हम समाज जो है चैरिटी बिगिन्स एट होम कहते हैं, हम अपने घर से ही छोटे छोटे हमारी जीवन की जो धारणा से हम सोसाइटी को बदल सकते हैं। ऐसी दो शब्द आपके सामने रखते हुए मैं समाप्त करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत आभार आदरणीय करुणा भाई जी का, और सभी से अनुरोध करते हैं कि अभी हम सभी 3 मिनट ईश्वरीय स्मृति में बैठेंगे, परमात्मा की याद में। अभी हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी मौजूद हैं जिनका की उद्बोधन अभी हम सुनेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम परमात्मा की स्मृति में 3 मिनट राजयोग का अभ्यास भी करेंगे, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय विजयलक्ष्मी दीदी, जो कि राजस्थान जोन सह संचालिका है समाज सेवा प्रभाग के, और वर्तमान समय राजस्थान में डूंगरपुर एवं उदयपुर प्रतापनगर संभाग की निमित्त संचालिका बनकर आप ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय विजयलक्ष्मी दीदी।
ओम शांति। सर्वोच्च समाज के निर्माता परमपिता परमात्मा के आह्वान के साथ मंचासीन मेरे वरिष्ठ जन, आदरणीय भाइयों बहनों, बहुत सुंदर सी बातें हम सुनते आए। संगम एक प्रोजेक्ट ही ऐसा है कि किस तरह से हम जोड़ करके संगम अर्थात ही जोड़ जो जनरेशन गैप है उनको जोड़ करके एक ब्रिज का काम जो हमारे अंदर एक सम्मान प्रेम क्षमा आशीर्वाद के दिव्य गुण कार्य करते हैं उन बातों के आधार से ही हर घर घर में हम खुशहाली ला सकते हैं एक सम्मानजनक गौरवपूर्ण वृद्धावस्था महसूस कर सकते हैं तो ये सब बातें हमने सुना उन बातों को अगर हम जीवन में लाना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता के माध्यम से ही आध्यात्मिक ज्ञान एवं योग तो इन सब बातों को हम प्रैक्टिकल लाने के लिए कुछ पल के लिए संगम हम स्वयं का स्वयं के पिता परमात्मा के साथ संगम का अनुभव करेंगे अर्थात योग जोड़ उसका कुछ पल के लिए अनुभव करते हुए परमात्मा से उस शक्ति प्राप्त करके दुनिया के सर्व आत्माओं को उस शक्ति का सहयोग प्रदान करें ताकि हर घर खुशहाली का हो हमारा समाज देश विश्व इतना सुख शांति से रहें हर एक दूसरे का सम्मान प्रेम करते हुए तो चलें अभी हम कुछ पल महसूस करें कि इन सब बातों को सुन रहे थे सुनने वाली शक्ति इस शरीर में ब्रिकुटी के मध्य विराजमान एक चैतन्य शक्ति दिव्य शक्ति आत्मा हम खुद हैं तो महसूस करें कि मैं एक सूक्ष्म शक्ति आत्मा अपने आप को प्रकृति के मध्य शरीर में बहुत ही सूक्ष्म एनर्जेटिक पॉइंट एक चमकता हुआ सितारा महसूस कर रही हूँ मैं जगमगाता सितारा एक अंतर मन की यात्रा पर हूँ इस आवाज की दुनिया से पार आसमान से भी पार चांद सितारों की दुनिया से अति दूर एक लाल स्वर्णिम प्रकाश में लोक मैं जगमगाता सितारा महसूस कर रही हूं उस प्रकाश में लोक में स्वयं परम ज्योति परमात्मा हम सभी आत्माओं के पिता विराजमान है परमपिता परमात्मा शांति प्रेम आनंद के सागर है हम आत्मा अपने आप को परम धाम में परमात्मा के सानिध्य में महसूस कर रहे हैं भगवान का सानिध्य बहुत ही प्यारा है बहुत ही शक्ति भरा है परमात्मा के सानिध्य मात्र से हम आत्मा परमात्मा स्नेह परमात्मा शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं हमें महसूस हो रहा है परम ज्योति परमात्मा से शांति की शक्ति मुझे आत्मा में भर रही है परमात्मा प्यार मुझे आत्मा पर बरस रहा है सच में परमात्मा प्यार से भरपूर हम आत्मा परमधाम लोक से महसूस कर रहे हैं, परमात्मा स्नेह, परमात्मा शक्ति, परमात्मा शांति, हम आत्मा के माध्यम से सारे विश्व में प्रवाहित हो रहा है। विश्व की एक एक आत्माओं तक परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति की किरणें पहुंच रही हैं। संसार की एक एक आत्माएं महसूस कर रही हैं, भगवान की शक्ति उन्हें मिल रही है, परमात्मा प्यार मिल रहा है। सभी आत्माएं बहुत ही खुश हो रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की शांति, परमात्मा शक्ति सारे ही विश्व में हर आत्माओं तक पहुंच गई। हर एक आत्माएं झूम रही है। हम आत्मा महसूस कर रहे हैं कि परमात्मा से अपने आप को भरपूर होकर परमधाम लोक से फिर से इस पांच तत्वों की दुनिया में, पांच तत्वों के शरीर में अपने आप को त्रिकुटि के मध्य एक जगमगाता सितारा महसूस कर रहे हैं। और परमात्मा पिता से वायदा है कि हम आत्माएं, हे पिता परमात्मा, आपसे प्राप्त स्नेह, शक्ति, शांति को सबको पहुंचाएंगे। सभी एक दूसरे का सम्मान करते हुए, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार से व्यवहार करेंगे। सारे ही संसार को स्नेह प्यार से भरपूर सम्मानजनक जीने की कला सिखाएंगे। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो घड़ी है जिसका आप सभी, हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम सभी के बीच अति सम्माननीय डॉक्टर श्री वीरेंद्र कुमार जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के केंद्रीय मंत्री, आप मौजूद हैं। आपने सभी के विचार सुने और आपके दिल में भी भावनाओं का एक समुद्र है, तो आपके द्वारा भी हम उस जानेंगे, सुनेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं बहनों से और वरिष्ठ भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि आपका सम्मान करेंगे। हम सभी करतल ध्वनि से आपका सम्मान भी करना चाहते हैं। एक नहीं लेकिन दो दो MOU भारत सरकार के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के साथ ब्रह्मा कुमारी इसके चल रहे हैं। पहले नशा मुक्त भारत अभियान, उसमें भी हमें आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अब संगम प्रोजेक्ट के द्वारा भी ये नाता और गहरा हो गया है। आपके बारे में मैं बताना चाहूंगी, आप मध्य प्रदेश सागर से हैं और आपने लगातार हर बार आपने इलेक्शंस में बहुमत हासिल की है। आप इतने लोकप्रिय हैं, जनप्रिय हैं, क्योंकि आप सभी का सदा सेवा भाव से, सबके लिए सेवा भाव से आप हमेशा भरपूर रहते हैं। समाज का कैसे उत्थान हो, हर एक क्षेत्र तक कैसे हर एक कल्याण की नीति पहुंचे, इसका हमेशा आप ध्यान रखते हैं। और भारत सरकार ने भी इससे पहले आपको बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स दिए, जैसे कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, माइनॉरिटी अफेयर्स आदि। तो आपने हमेशा अपने हर दायित्व को पूरी निष्ठा से आपने पूरा किया है। और ब्रह्मा कुमारी के साथ भी आपका बहुत स्नेह का संबंध है। हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय का भी हम सभी सम्मान कर रहे हैं। ईश्वरीय सौगात
उन्हें प्रदान कर रहे हैं। आप भी समय प्रति समय हमेशा बहनों के साथ ही होते हैं। और अब मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि आप भी अपना उद्बोधन एवं हम सभी को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए आप प्रतिज्ञा भी कराएंगे। हम सभी के माननीय मंत्री महोदय एवं ब्रह्मा कुमारी बहनों के अति स्नेही भ्राता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी।
ओम शांति। संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन। ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में शांतिवन में आयोजित आज के इस महत्वपूर्ण आयोजन में कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र के सांसद लोकसभा में हमारे साथी भाई श्री लुम्बाराम चौधरी जी, आदरणीय आशा दीदी जी, आदरणीय संतोष दीदी जी, आदरणीय सुषमा दीदी जी, अवतार भाई जी, स्वामीनाथन भाई जी, करुणा भाई जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय भाई बहन, यहां पर कार्यक्रम में उपस्थित देश के विभिन्न अंचलों से ब्रह्म कुमारी के साथ में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित आदरणीय भाई बहन, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मोनाली पी नगाते जी, हमारे विभाग के अन्य अधिकारीगण, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, शांतिवन की इस पावन धरा पर यहां पर आना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहां का वातावरण, यहां की शांति, यहां का अनुशासन हर आगंतुक के हृदय में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रेरणा देने का काम यहां पर इस स्थान पर अपने आप में मिलता है। आज मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूं कि यहां पर मुझे संगम गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन इस संबंध में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में जो एमओयू किया उस अभियान की प्रगति के इस अवसर पर फिर से यहां पर दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ महीने पहले जब हमने ओआरसी गुरुग्राम में यह कार्यक्रम किया था, स्वामीनाथन जी ने बताया था कि उसके पश्चात देशभर में बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं और इससे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो समाज के बीच में पहुंचकर जो काम करना चाहता है, जिस तरह से ब्रह्म कुमारी संस्थान ने संवेदनाओं से भरपूर समाज के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को न केवल स्पर्श किया बल्कि जिस संवेदनशीलता के साथ में जाकर वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने का काम किया, उनके बीच में तरह तरह की गतिविधियों को आयोजन करने का कार्यक्रम किया बनाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी हमारे आदरणीय दीदियों के द्वारा, हमारे आदरणीय भाइयों के द्वारा संगम इस शब्द में संपूर्ण सार छिपा है। संगम का अर्थ होता है पीढ़ियों का मिलन, अनुभव और ऊर्जा का संगम, विचार और संवेदना का संगम। अवतार भाई ने बहुत सही बात कही थी, पश्चिमी सभ्यता के झोंके जो है ना हमारी संस्कृति को, हमारे तनों को झकझोर रहे हैं। आदरण दीदी ने, मैं बैठा तो संतोष दीदी ने बहुत बात अच्छी बात कही कि हम पश्चिम की चीजों का हमारे यहां देश में बड़े जल्दी उसका अंधानुकरण तो हम कर लेते हैं, उनकी बुराइयों को तो हम जल्दी हम आत्मसात कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो अच्छाइयां, उन अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ उदाहरण भी उन्होंने बताए। मैं मेलबर्न गया था ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर एक भारतीय परिवार में, हमारे परिचित थे, उस परिवार में जाने का मुझे अवसर मिला। मैं उस परिवार में गया तो वहां पर उनकी बेटी बहुत दूर से मिलने के लिए अपने मां बाप से आई थी। वो काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे और उसके बातचीत का सार यही था कि वो बेटी अपने मां बाप से कुछ प्राप्त करने के लिए आई थी, पैसा मांगने के लिए आई थी। सारी बातचीत होने के बाद वो बेटी जाने लगती है। मैं बड़ा कौतूहल से सारे दर्शकों को देख रहा था। मां बेटी से ना पानी के लिए पूछती है ना भोजन के लिए पूछती है और बेटी चली जाती है। हम सब भारतीय संस्कृति के संस्कारों में पले बड़े लोग हैं। लुमाराम जी, गांव में अगर कोई बेटी शादी के बाद गांव में आती है तो पड़ोस की शादी जो भाभियां होती हैं, चाची होती हैं, बुआ होती हैं, वो सब आती हैं, बेटी से पूछती हैं स्वस्थ हो, परिवार कैसा है, कोई दुख तो नहीं है। कोई कहता हमारे यहां भोजन पर आना है, कोई कहता हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। लेकिन वो परिवार वहां पर जाने के बाद पश्चिमी सभ्यता में तो ढल गया, अपनी संस्कृति को भूल गया। कल रात्रि को ही मैं अपने संसदीय क्षेत्र में बात कर रहा था तो मैं एक बहुत पुराने परिवार के बारे में मैंने बातचीत की। हमने कहा फलाने व्यक्ति कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके एक बेटा उनका अमेरिका चला गया, दो बेटे यहीं पर वहीं पर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया और बंटवारा करने के बाद अब तीनों ही बेटे मां बाप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ये संगम का विचार यहीं से आया। ये जो परिवारों में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव आ रहा है, बेटे की नौकरी लगती है, बेटे की नौकरी लगने के साथ ही वो अलग रहने लगता है, मां बाप को ध्यान देना वो छोड़ देता है। मां बाप ने भोजन किया कि नहीं किया, वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनको कोई आवश्यकता है या नहीं। अभी आप सभी ने एक बड़ा ही मार्मिक प्रस्तुतिकरण यहां पर देखा, नाटक के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत किया गया, वो वास्तविक रूप में हमारी समाज की मनोदशा को दर्शाने वाला था। और इस हाल में मैं नहीं समझता कि एक भी भाई या एक भी बहन ऐसा रहा होगा जिसकी पलकें भीगी ना हो उस दृश्य को देखने के बाद। वो नाटक देखने के बाद हरेक की पलकों में आंसू झलक आए थे। ये हमारे समाज के बात चित्रण है। इससे हमको बाहर निकाल करके पीढ़ियों का मिलन, यानी दादा दादी का अपने नाती पोते के साथ में, अपने बेटे बहू के साथ में कैसे आत्मीयता का रिश्ता बने जब परिवार संयुक्त रूप से रहता है। ओल्ड एज होम की जो परंपरा है, ओल्ड एज होम की परंपरा पूरब की नहीं है, हमारे देश की ये ओल्ड एज होम की परंपरा है नहीं। ये ओल्ड एज होम का कल्चर आया विदेश से, पाश्चात्य देशों से, ये हमारे यहां का नहीं था। हमारे यहां तो परिवार एक साथ रहता था। अगर परिवार में पांच भाई होते थे तो पांचों भाई एक साथ रहते थे, एक कृषि का काम देखता था, एक व्यापार का काम देखता था, एक घर में नमक आना है, तेल आना है, गुड़ आना है, घलती आना है, ये देखता था। एक परिवार में जितने बच्चे हैं उनका एडमिशन कहां होना है, कब किसकी फीस जमा होना है, कब किसकी पुस्तकें आना है, कब किसकी ड्रेस बनना है, एक भाई ये देखता था। एक भाई कहां शादी में जाना है, कहां दुख में जाना है, ऐसे सामाजिक संबंधों का निर्वाह करता था। ये संयुक्त परिवार की परंपराएं हमारे देश की संस्कृति थी। लेकिन ये तो विदेश का कल्चर है कि अब शादी होने के बाद मां बाप को छोड़ के जहां नौकरी लगती वहां चला जाता है। पत्नी भी वो कहती कि आपकी नौकरी लगी अब जल्दी चलिए, मुझे भी वहां पर ले चलिए। और संगम का विचार यहीं से आया। इस संगम के विचार के माध्यम से जब ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में एमओयू हमने किया, हमको भी इतना मतलब जो आज जब स्वामीनाथन जी ने बताया कितने सारे स्थान पर, और जब उसके बारे में प्रस्तुतिकरण किया गया, वीडियो बताया गया, उस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि ब्रह्म कुमारी संस्थान ने इस कार्यक्रम को केवल कार्यक्रम के रूप में नहीं लिया, समाज की एक महती आवश्यकता, सबसे एक मार्मिक पहलू जो है, सबसे संवेदनशील पहलू जो है, जो समाज की आवश्यकता है, चेतना जागृत करने का काम, वो काम जिस तरह से ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा किया गया, मैं हृदय की गहराइयों से सारे मंत्रालय की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से ब्रह्म कुमारी संस्थान का आभार करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, और यहां पर आए हुए सभी भाई बहनों का, क्योंकि ये जिन स्थानों पर आए हैं उन सारे स्थानों पर जिस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहता हूं। भारत जैसा विशाल देश जहां पारंपरिक संस्कृति, परंपराएं, मूल्य हमारे जीवन की धुरी हैं, वहीं यह बहुत आवश्यक है कि हम वृद्धावस्था को बोझ नहीं समझें बल्कि गरिमा और अनुभव के रूप में देखें। उन परिवारों में कई जगह मैंने देखा जब बेटे अलग होकर चले जाते हैं, परिवार में केवल बुजुर्ग चले जाते हैं, वो बुजुर्ग किस तरह से अकेलेपन के दौर से गुजरते हैं, जूझते हैं। केवल भौतिक सुविधाएं जो है ना, ये उनको भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, उनको आत्मीयता की आवश्यकता है। उनका बेटा बहू उनके पास आकर बैठे, बेटा आकर हाथ में हाथ धरकर जब बैठता है, उनका हाथ से स्पर्श करता है, तो माँ बाप को, बुजुर्गों को जो प्रसन्नता होती है, उसको किसी भी भौतिक सुविधा से नहीं आकलन किया जा सकता है। उनका जब नाती या नातिन जब स्कूल से आता है, नाती स्कूल से आता है, जूता इधर फेंकता है, बस्ता उधर फेंकता है, और दादा से बोलता है, दादा रोहन ने आज हमारे डिब्बे से हमारा नाश्ता निकाल के खा लिया, आकाश ने हमारी पेंसिल ले ली, तो दादा दादी मुस्कुराते जाते हैं, सुनते जाते हैं। उन सारी बातों में दादा दादी और नाती पोते का जो संवाद होता है, वो संवाद उनको कितना आत्मीयता के रिश्ते के साथ में जोड़ता है, इसकी कल्पना केवल वही करते हैं, वही कर पाते हैं जो संयुक्त परिवारों में रहते हैं। इसी को जोड़ने के लिए ही ये गरिमा सम्मानजनक जीवन जीने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उस कार्यक्रम के माध्यम से ही ये अवधारणा सामने आई, जहां सरकार की नीतियां और आध्यात्मिक संगठन की संवेदनाएं मिलकर एक नई सामाजिक चेतना का निर्माण करने की दिशा में हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम करें। मुझे बहुत हर्ष है कि देश भर में ब्रह्म कुमारी संस्थान के कई सेवा केंद्रों ने संगम, एज विथ प्राइड, लाइफ विथ डिग्निटी इस संदेश को अपने अपने क्षेत्रों में सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से जीवंत कर दिया है। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए राजयोग ध्यान शिविर आयोजित किए गए, जहां उन्हें मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिला है। वहीं युवा एवं बच्चों को जोड़कर पीढ़ियों के बीच संवाद व समाज का सेतु निर्मित किया गया है। कई वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा और आत्मसम्मान विषयक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। ये सभी प्रयास बताते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था केवल उपदेश नहीं देती। सामान्य रूप से लोगों को ये लगता है कि ब्रह्म कुमारी संस्था केवल उपदेश देने का काम करती है, लेकिन मंत्रालय ने, जैसे हमारी बहन ने बताया, कि मंत्रालय ने 2 MOU किए ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ में। एक नशा मुक्त भारत अभियान, देश के पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एक यहां नशा मुक्त भारत अभियान का MOU किया, और उस नशा मुक्त भारत अभियान को भी ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा जिस गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ाया गया, मैं समझता हूं कि मंत्रालय पीछे रह गया और ब्रह्म कुमारी संस्था इस क्षेत्र में कहीं बहुत गतिशीलता के साथ में आगे आ गई। मूल्यों को जीवन में उतारने का मार्ग भी ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारे मंत्रालय के लिए ये साझेदारी, चाहे वो नशा मुक्त भारत अभियान की हो या वरिष्ठ नागरिकों के साथ में जो है ना पीढ़ियों के मिलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात हो, यह हमारी साझेदारी बहुत मूल्यवान है। सरकारी योजनाएं तभी प्रभावशाली बनती हैं जब उन्हें समाज की आत्मा यानी संवेदना और आध्यात्म से जोड़ा जाता है, और आध्यात्मिकता के साथ में जोड़ने हुए संवेदनशील विषय को समाज के साथ में चेतना निर्माण करने का काम ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। यह मंच पर प्रस्तुत होने वाली रिपोर्ट, जो यहां पर रिपोर्ट बताई गई, केवल आंकड़े नहीं है बल्कि वो सेवा और समर्पण की वो कहानियां हैं जो जीवंत रूप में वीडियो के माध्यम से हम सभी के समक्ष यहां पर बताई गई हैं। जब सेवा, सहयोग और स्नेह मिलते हैं तो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है। हमारा मंत्रालय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना, सीनियर सिटीजनों के लिए हेल्पलाइन और वृद्धाश्रमों के उन्नयन के लिए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनको कान की मशीन की आवश्यकता है, जिनको चश्मे की आवश्यकता है, जिनको बत्तीसी की आवश्यकता है, जिनको छड़ी की आवश्यकता है, व्हील चेयर की आवश्यकता है, कमोड वाली चेयर की आवश्यकता है, ऐसे सारे उपकरण देने का काम करते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी शुरू गई है। उस राष्ट्रीय हेल्पलाइन का उपयोग करके सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक अपनी कठिनाइयां बताकर उसमें राज्य सरकारों को भी सहयोग लेते हुए, उसमें सामाजिक आध्यात्मिक संगठनों का सहयोग लेते हुए, हम उनके जीवन में कैसे सरलता ला सकते हैं, कैसे उनके जीवन को सुगम्य बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि वृद्धावस्था की गरिमा केवल आर्थिक या भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और आत्मीय संबंध और सम्मान से होती है। इसलिए मैं यहां पर उपस्थित सभी भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूं कि हम अपने घरों में, अपने समाज में, हमारे जो घरों में वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्धजन हैं, उनको केवल देखभाल का ही नहीं, बल्कि उनके निर्णयों में उनकी भूमिका, मार्गदर्शन का उनको अधिकार दें। क्योंकि घर में दादा दादी या नाना नानी का होना ये हमारे लिए आशीर्वाद का स्रोत हैं, होते हैं। ये तभी संभव होता है जब हम उनको सुने, उनको समझें, परिवार के निर्णय लेने में उनको हम पूरा सम्मान दें। इस अभियान के माध्यम से आज देश में जो वातावरण बन रहा है वो केवल वृद्धजनों के जीवन को समृद्धि नहीं करेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश देगा कि संवेदना और संस्कार ही वास्तविक विकास के आधार हैं। मैं तो जब मैं देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए कार्यों की झलक यहां पर देखता हूं तो मुझे विश्वास होता है कि यह पहल आने वाले समय में भारत को सीनियर सिटीजन फ्रेंडली नेशन बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय दीदी ने कहा था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक दिवस उनके लिए बनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस बना हुआ है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने एक पहल की है प्रारंभ, जिसमें दादा दादी नाना नानी और उनके नाती पोतों के साथ में एक दिन के कार्यक्रम आयोजित करने की श्रृंखला को आगे बढ़ाया है और आपके ब्रह्मकुमारी संगठन के साथ में दिल्ली में पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुआ था बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें वरिष्ठ जनों ने जिस तरह से आकर अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी थी वो बहुत उत्साहजनक थी और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में ऊर्जा उमंग का संचार करने वाली थी। हम अपने घरों में हमारे यहाँ परंपरा होती है कि जब उठते हैं हमारे परिवारों में हम लोग उठते हैं तो माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं। पश्चिम का सोच क्या है, पश्चिम के लोग एक दिन फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे, एक दिन दादा दादी का दिन, तो ये पश्चिम का सोच है। हमारे यहाँ एक दिन में ये हम अपने कर्तव्य की इतनी से नहीं समझते, हमारे यहाँ तो रोज पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है हमारे यहाँ, वो तो केवल एक दिन याद करते हैं। पश्चिम के लोग केवल एक दिन याद करते हैं, 364 दिन बाकी भूल जाते हैं। हम अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहे, आने वाली पीढ़ियों को उन सारे संस्कारों से जोड़ने का बांधने का हम काम करते रहें तो मुझे पूरा विश्वास है कि वृद्धावस्था जीवन का संध्याकाल नहीं बल्कि प्रभात काल भी हो सकता है यदि उसमें सम्मान, सेवा और प्रेम का प्रकाश हो। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं, मैं ट्रेन से झांसी से दिल्ली आ रहा था और उसमें एक बहुत बुजुर्ग सज्जन को, जैसे हमने अभी नाटक के माध्यम से देखा, उनका बेटा उनको लेकर आ रहा था, शायद उनको चिकित्सीय सेवा की आवश्यकता थी तो दिखाने ले जा रहे थे। वो आते हैं, अपने पिताजी को बिठा लेते हैं, बाजू में वो बैठ जाते हैं, मैं 4-5 सीट पीछे बैठा हुआ था सामने की तरफ, आमने सामने सीटें होती हैं। मैंने देखा कि थोड़ी देर के बाद उनके बेटे की नींद लग जाती है, बेटा गहरी नींद में सो जाता है, शायद थका था। अब उनके पिताजी को याद, शायद उनके दादाजी रहे होंगे, उनको बाथरूम जाने की आवश्यकता लगती है। वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं कि वो गहरी नींद में सोया हुआ है, तो देखिए संवेदना, देखिए हृदय की, वो अपने बेटे को नहीं जगाते हैं, वो किसी तरह से उठ के खड़े होते हैं तो वो शरीर डगमगाने लगता है। उनके बाजू वाली गैलरी के बाद वाली सीट पर एक नौजवान बैठा था, वो नौजवान फौरन उठ के खड़ा होता है, उनका हाथ पकड़ता है और उनको बाथरूम ले जाता है। उनकी सीट के पीछे विदेशी नागरिक बैठे हुए थे, पर्यटक आए थे और वो खजुराहो से लौट रहे थे तो वहां ट्रेन से बैठे थे, तो विदेशी नागरिकों ने देखा कि उनका बेटा सो रहा है लेकिन उनके गैलरी के बाजू वाली सीट पर जो नौजवान बैठा था उस नौजवान ने तत्परता से उठ करके न केवल उनका हाथ थामा बल्कि उनको जाकर बाथरूम तक जाकर लेकर गए। ये भारतीय संस्कृति है, सदियों से हमको वरिष्ठ जनों का सम्मान करना सिखाती आई है, वरिष्ठ जनों की आवश्यकता के समय पर अपने चीज अपना कष्ट भूल करके, क्योंकि जीवन भर उन्होंने अपने अनुभवों से स्वयं कष्ट सहन करके भी, स्वयं भूखे रह करके भी, स्वयं फटे कपड़े पहन करके भी अपने बच्चों की आवश्यकताओं के लिए, चाहे वो फीस की आवश्यकता हो, चाहे कपड़ों की आवश्यकता हो, चाहे कोचिंग की आवश्यकता हो, चाहे उनके लिए मोटरसाइकिल दिलाने की आवश्यकता हो, उन्होंने अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने में कहीं नजरअंदाज नहीं किया। ये बच्चों की जिम्मेवारियां बनती हैं कि बड़े होने पर हम अपने दादा दादी को हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, हम अपने माता पिता का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। संगम की अवधारणा के इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप सबके साथ में जो आज हमें यहां पर अनुभव मिला उससे मन को बहुत शांति मिली। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जब नीति में संवेदना और समाज में अध्यात्म जुड़ता है तो परिवर्तन केवल बाहर ही नहीं होता है बल्कि भीतर ही होता है। और जब हम अच्छा करेंगे तो हम अपने देश का तो पहले से करते आ रहे हैं, पश्चिम के राष्ट्र हमारे देश से सीखेंगे। जिस तरह से ब्रह्मकुमारी संस्थान की विदेशों में लगभग 150 के आसपास शाखाएं काम कर रही हैं, जब हमारे यहां से अच्छा प्रकाश निकलकर जाएगा उस प्रकाश की किरणों से पश्चिम भी हमारे यहां से सीखेगा। उन्होंने हमारे स्वामीनाथन जी ने उदाहरण दिया था कि वहां पर जाकर उन्होंने मोक्ष पाना चाहता। मैं कई परिवारों से ऐसा मिला कि जो अपने बेटे बेटों के साथ में बेटियों बहुओं के साथ में विदेश चले गए, लेकिन जब जीवन की संध्या काल आई तो वो कहते हैं हम घर वापस जाना चाहते हैं, हम अपने मातृभूमि वापस जाना चाहते हैं, जीवन की अंतिम संध्या अंतिम सांस हम वहीं लेना चाहते हैं। वहां अपनों का अपनापन है, पड़ोसियों का प्यार है, वहां पर बच्चों का स्नेह है, वहां पर संवाद है, वहां पर संपर्क है। बोले यहां पर तो हम घर में केवल कैद होकर रह जाते हैं, हम अपने जीवन की संध्या जो है ना अपने गांव में जाकर निकालना चाहते हैं, अपने वतन में जाकर निकालना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को हर हृदय की यात्रा बनाएं ताकि आने वाले वर्षों में कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने आप को अकेलेपन या उपेक्षित अनुभव न करें। यही संगम की सच्ची सफलता होगी और यही हमारे वरिष्ठ जनों के प्रति उनके प्रति सच्चे सम्मान की भावना होगी, श्रद्धा की भावना होगी। उनका देखभाल करने का संकल्प लेकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल रायपुर में जो उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, वो अक्सर हम लोगों के बीच में कहते हैं कि हम ये वरिष्ठ नागरिक थे तब हम हैं, ये वरिष्ठ नागरिक नहीं होते तो हम नहीं होता, कल वो थे तो आज हम हैं और आज हम अच्छा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारे साथ अच्छा करेंगी। तो इसलिए हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का उनकी सेवा करने का संकल्प लेकर उसको सिद्धि तक पहुंचाने की भावना लेकर हम सभी यहां से जाएंगे। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी का, और आपने जो भी हमें मार्गदर्शन दिया है उसका हम करतल ध्वनि से समर्थन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ मंत्रालय से हमारे बीच में आए हुए जॉइंट सेक्रेटरी मिस मुनाली टकाटे जी, आपका भी हम सम्मान करना चाहेंगे मंच पर, और अन्य जो हमारे बीच में आए हैं अधिकारीगण आपका भी। और अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए राजयोगी वीरेंद्र भाई जी को, जो कि मुख्यालय संयोजक हैं समाज सेवा प्रभाग के और साइट सिंह ऑफिस के प्रभारी हैं, आपको मैं आमंत्रित करना चाहती हूं।
ओम शांति। माननीय मंत्री जी का प्लेन का टाइम 4 बजे का है, इसलिए हम सभी से विदा लेके जा रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी जो सर्वोच्च समाज सेवक परमपिता परमात्मा के प्रिय संतान डॉक्टर वीरेंद्र भाई जी, जो हम सभी के बीच आकर के अपना उद्देश्य बताए, जो पांचवी संस्कृति भारतीय संस्कृति के जो बारे हमारा भारत का है उसका उजागर किया, हम आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे जालौर सिरोही के लुमाराम जी जो संसद है जालौर सिरोही का, उन्होंने भी हम सभी संस्था को बहुत सहयोगी है और सहयोग देते रहते हैं। आदरणीय लुमाराम जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदरणीय संतोष दीदी जी ज्वाइंट चीफ है, महाराष्ट्र जोन के कोऑर्डिनेटर है, समाज सेवा प्रभाग के अध्यक्ष है। आदरणीय संतोष दीदी जी जो अपना व्यस्त समय होते हुए भी इस कार्यक्रम में आकर के अपना शुभ आशीर्वाद दिए, आदरणीय संतोष दीदी जी को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी मोनाली ढकाले जी जो इस एमओ के लिए हमको विशेष सूत्रधार है, आदरणीय मोनाली सिस्टर जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सचिव मंत्री जी के साथ पीए आए हमारा सचिव भरत भाई जी, उनको भी आभार व्यक्त, उनकी पूरे टीम को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर के इंचार्ज है और हम सभी का प्रेरणा का स्रोत है, आदरणीय आशा दीदी जी को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साथ में आदरणीय सुषमा दीदी जी जिसका नाम है सूक्ष्म ज्ञान को गहराई से बता करके हम सभी को लाभान्वित किया। अब जयपुर म्यूजियम संभाग के इंचार्ज है, आपने भी यहाँ आकर के समय देकर हम सब लाभान्वित किया। आपको भी सुषमा दीदी जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साथ में आदरणीय बीज लक्ष्मी दीदी जी जो राजस्थान का सह संचालिका है हमारे स्वसमाह सेवा प्रभाग के, आदरणीय बीज लक्ष्मी दीदी को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साथ में अवतार भाई जी जो हमारे समाज सेवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और हम सभी को प्रेरणा देते उमंग उत्साह बढ़ाते रहते सेवा के लिए, तो आपको भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी जो इस प्रोग्राम के बारे में हम सभी को विशेष रूप से बताया, हम आदरणीय स्वामी भाई जी स्वामीनाथन भाई जी को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे करुणा भाई जी जो इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव है और हम आप सभी का प्रेरणादायी बोल सुनकर के हम सभी लाभान्वित किया, आदरणीय करुणा भाई जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे जो इस कार्यक्रम के जो है मधुर वाणी ग्रुप, हमारे वेलकम डांस करने वाले और नृत्य नाट्य करने वाले पश्चिम दिल्ली पश्चिम बिहार दिल्ली से आए हमारे सभी टीम को हम हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। साथ में हमारे इस कार्यक्रम में जो साउंड डिपार्टमेंट वीडियो डिपार्टमेंट जो आवास निवास देने का हमारा मुनि दीदी जी का पूरा टीम, देवी भाई जी का पूरा टीम और जितने भी डिपार्टमेंट हैं मधुबन निवासी के एक एक भाई का नाम समेत हृदय से हम अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद भी देना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग दिए और इस सभा में उपस्थित जितने भी भारत और नेपाल से आए हुए जितने भी टीचर बहने हैं भाई बहने हैं, इस प्रोग्राम को हम अति सहज रूप से कर सकते हैं। हमारे डेली क्लास में आने वाले माता पिता भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, नाती नातने भी उनके साथ में जो अगर नाते नाते आ रहे हैं उनके बच्चे ज्ञान बने उनको भी हम ला करके, अगर हम बच्चे आते हैं माता पिता ज्ञान बने उनको भी ला कर सहज रीति से हम इस प्रोग्राम को सफल बना सकते हैं। आपस में जिसका संगम नाम दिया है हम आपस में एक भारतीय संस्कृति को फिर से एक देवी स्वराज्य बनाने के लिए हम सभी मिल करके अवश्य फिर से हम इस स्वर्णीय संसार बनाने के लिए हम आपस में मिलकर हम कार्य कर सकते हैं। तो आप सभी को भी हम यहाँ प्रोग्राम को आकर उपस्थित हुए हम आप सभी को भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आदरणीय रश्मिकांत भाई जी जो हमारे बीच है आकर के यहाँ हम सभी को यहाँ आकर के अपना समय दिया, हम आदरणीय रश्मिकांत भाई जी को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हमारे मंच संचालन आदरणीय ब्रह्मा कुमारी विद्यार्थी बहन जी जो मंच को कुशलतापूर्वक संचालन किया और इस एमओयू के लिए मंत्रालय के साथ में संबंध में निभा करके जो तालमेल मिलाया और उसमें इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आपका भी विशेष योगदान है, हम आपको भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। ओम शांति, धन्यवाद।
आदरणीय वीरेंद्र भाई जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने सभी का धन्यवाद किया और अभी उस परमात्मा का निराकार शिव बाबा का भी हम सभी एक मिनट प्रभु स्मृति में रह करके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इतना सुंदर सेवा का हमें ये अवसर प्रदान किया।
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।
सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है, सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।